ಸಹಿತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗನಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತಿ ಗೋಪೀಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತತ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೇ ರಾಧೆ ಬೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ಸೋ ಆಜ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಫೋರ್ಥ್ ಸೆಷನ್ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಆರಂಭ ಕರೆಂಗೇ. ಯ ಸೆಷನ್ ಕ ಟೈಟಲ್ ಹೇ ಮೇ ಕೌನ್ ಹೂ ಹೂ ಎಮ್ ಐ ಆತ್ಮ ಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಸ್ಮೇ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕರೆಂಗೇ ಔರ್ ಯೇ ಜಾನ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರೆಂಗೇ ಕಿ ಮೃತ್ಯು ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ದುಬಾರಾ ಜೀವನ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಯಾ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೇ, ಯಾ ಯೇ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಹೇ ಯಾ ಕೇವಲ ಏಕ್ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರ ಹೇ. ಕಿ ಕುಛ್ ಲೋಗ್ ಕಹತೆ ಹೇ ಕಿ ಮರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಫಿರ್ ಸೇ ಜನ್ಮ ಲೇನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೇ. ತೋ ಹಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೇ ಕಿ ಜನ್ಮ ಹೋತಾ ಹೇ, ಹೇ ನಾ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಬರ್ತ್. ತೋ ಜನ್ಮ ಹೋನೆ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ ಕಿ ಮೇ ಕಹೀ ಸೇ ಆಯಾ, ಕಹಾಂ ಸೇ ಆಯಾ. ಕುಛ್ ಲೋಗ್ ಕಹೆಂಗೆ ಕಿ ಮಾ ಕೆ ಗರ್ಭ ಸೇ ಆಯಾ, ಹೇ ನಾ, ಪರ್ ಮಾ ಕೆ ಗರ್ಭ ಮೇ ತೋ ಕುಛ್ ಸಮಯ ಪಹಲೆ ನಹೀ ಥಾ, ತೋ ಕಹಾಂ ಸೇ ಆಯಾ. ತೋ ಕುಛ್ ಲೇಂಗೆ ಕಹೆಂಗೆ ಕಿ ಪಿತಾ ಕೆ ವೀರ್ಯ ಮೇ ಆಯಾ, ಪಿತಾ ಕೆ ವೀರ್ಯ ಮೇ ಕಹಾಂ ಥಾ, ಕಬ್ ಥಾ, ಸೊ ಉಸ್ಕೆ ಪಹಲೆ ಕಹಾಂ ಥಾ ಮೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮೇ ಕೌನ್ ಹೂ ಔರ್ ಮೇ ಕಹಾಂ ಸೇ ಆಯಾ ಹೂ. ಹಾಂ, ಮೇರೆ ನೋನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಜೊ ಹೇ ಉಸ್ಸೆ ಮೇ ಇತ್ನಾ ಹೀ ಸಮಜ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂ ಕಿ ಮೇ ಅಪ್ನೇ ಪಿತಾ ಕೆ ವೀರ್ಯ ಮೇ ಥಾ ಯಾ ಮಾತಾ ಕೆ ಗರ್ಭ ಮೇ ಥಾ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಮೇ ಗರ್ಭ ಸೇ ಬಾಹರ್ ಆಕರ್ ಕೆ ಅಬ್ ಏಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇ ಜೀ ರಹಾ ಹೂ. ಏಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇ ಮೇ ಅಪ್ನಾ ಜೀವನ್ ಜೀನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂ. ಯಾ ತೋ ಫಿರ್ ಹಮ್ ಜಬ್ ಮರ್ ಜಾತೆ ಹೇ ತೋ ಫಿರ್ ಕಹಾಂ ಚಲೆ ಜಾತೆ ಹೇ. ಸೊ ಡೂ ವಿ ನೋ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್? ಹಮಾರಾ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಜನ್ಮ ಸೇ ಪಹಲೆ ಥಾ ಯಾ ನಹೀ ಥಾ? ಭಗವಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮೇ ಕಹತೆ ಹೇ ಅರ್ಜುನ್ ಕೋ ಕಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನಾನೇವ ತತ್ರ ಕಾಪರಿ ದೇವನಾ. ಆಪ್ ಲೋಗೋನೆ ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಪಢಾ ಹೋಗಾ ಕಭಿ, ಹೇ ನಾ? ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜೊ ಲೋಗ್ ಪಢತೆ ಹೇ ದೂಸರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸೇ ಬತಾತೆ ಕಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದಿ ನಿಭೂತಾನಿ, ಜನ್ಮ ಲೇನೆ ಸೇ ಪಹಲೆ ಜೀವ ಜೊ ಹೇ ಅವ್ಯಕ್ತ ಥಾ. ಶರೀರ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಕೆ ಉಸ್ನೆ ಅಪ್ನೇ ಆಪ್ಕೋ ಪ್ರಕಟ್ ಕಿಯಾ. ಹಮ್ ಜೀವ ಕೋ ಕೈಸೆ ಜಾನ್ತೆ ಹೇ ಉಸ್ಕೆ ಶರೀರ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇ. ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಕೆ ಜೀವ ನೇ ಅಪ್ನೇ ಆಪ್ಕೋ ಪ್ರಕಟ್ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಮರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಫಿರ್ ಜೀವ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಅಪ್ನೇ ಆಪ್ಕೋ ಫಿರ್ ಸೇ ಅಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ ಲೇತಾ ಹೇ. ಆಪ್ ಲೋಗೋನೆ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮೇ ಮೇ ಗಾನಾ ಸುನಾ ಹೋಗಾ, ದುನಿಯಾ ಸೇ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಜಾನೆ ಚಲೆ ಜಾತೆ ಹೇ ಕಹಾಂ, ಕೈಸೆ ಢೂಂಡೆ ಕೋಯಿ ಉನ್ಕೋ ಮಿಲ್ತೆ ನಹೀ ಕದಮೋ ಕೆ ನಿಶಾನ್. ಐಸೆ ತೋ ಹರ್ ಏಕ್ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಸೇ ಕೋಯಿ ನಾ ಕೋಯಿ ಗಯಾ ಹೋಗಾ, ಹೇ ನಾ? ತೋ ಡೂ ವಿ ನೋ ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್? ವೋ ಇಸ್ ಸಮಯ ಕಹಾಂ ಹೇ? ಕ್ಯಾ ಹಮ್ ಉಸ್ಕೋ ಇಮೇಲ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಕೋಯಿ ಪತ್ರ ಭೇಜ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಕೋಯಿ ಫೋನ್ ಲಗಾ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಉಸ್ಕಾ ಕೋಯಿ ನಂಬರ್ ಹೇ? ಹೌ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್? ಅನಂತ ಮೇ ವಿಲೀನ್ ಹೋತೆ ಹೇ. ಅನಂತ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೀನ್ ಹೋನಾ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ವಿಲೀನ್ ಹೋನಾ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ವಿಲೀನ್ ಹೋನೆ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಮರ್ಜ್ ಹೋನಾ ಯಾ ಸಮಾ ಜಾನಾ? ನೀ ವಿಲೀನ್ ಹೋನಾ, ವಿಲೀನ್ ಜೊ ಹಿಂದಿ ಶಬ್ದ ಹೇ ಉಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೇ ಮರ್ಜ್ ಹೋನಾ, ಸಮಾನಾ ಮತ್ಲಬ್ ಘುಸ್ ಜಾನಾ ಹೋತಾ ಹೇ. ಸೊ ಆಪ್ ಸೋಚ್ ಕುಛ್ ಔರ್ ರಹೇ, ಕಹೆ ಕುಛ್ ಔರ್ ರಹೇ ಹೇ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಆಪ್ಕೆ ಜೊ ಶಬ್ದ ಬೋಲ್ ರಹೇ ಹೇ ವೋ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅರ್ಥ ಕುಛ್ ಔರ್ ಹೇ ಔರ್ ಆಪ್ ಮನ್ ಮೇ ಜೊ ಸೋಚ್ ರಹೇ ಉಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಕುಛ್ ಔರ್ ಹೇ, ರೈಟ್? ಜೀವ ಜೊ ಹೇ ವೋ ಕಭಿ ಭೀ ಕಿಸಿ ಚೀಜ್ ಮೇ ಮರ್ಜ್ ನಹೀ ಹೋತಾ, ವಿಲೀನ್ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೇ. भगवान भगवद गीता में ही कहते हैं, नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था हे अर्जुन जब तुम नहीं थे, ये समस्त राजा लोग नहीं थे या मैं नहीं था। ऐसा कोई समय नहीं होगा जब ये राजा लोग नहीं होंगे, मैं नहीं रहूँगा या तुम नहीं रहोगे। और प्रेजेंट में तो हम लोग हैं, मैं हूँ, तुम हो, ये सारे राजागण हैं, और भूतकाल में भी ये लोग रहे हैं और भविष्य काल में भी ये लोग रहेंगे, पर इस समय जिस स्वरूप में है, हो सकता है इस स्वरूप में ना रहें, भूतकाल में इस स्वरूप में ना रहे हो, इसके पहले वो और कुछ रहे हो। यू अंडरस्टैंड? सो इंडिविजुअलिटी इज ऑलवेज मेंटेन्ड, देर इज नो मर्जिंग बिजनेस। लेकिन जो लोग कहते हैं कि विलीन हो गए हैं, अगर वो लोग दे आर नॉट एबल टू पास देयर सेंसेस प्रॉपरली, समा जाना और विलीन हो जाना दो अर्थ है। समा जाना मतलब घुस जाना उसमें, और विलीन हो जाना मतलब मर्ज हो जाना। तो आत्मा कभी मर्ज नहीं होती है, इट मेंटेन्स इट्स इंडिविजुअलिटी। सो मरने के बाद में मैं कहाँ जा रहा हूँ, दैट वी हैव नो आइडिया। बट हम अगर इस विज्ञान को, आत्मा के विज्ञान को अगर ठीक से समझेंगे, तो हम जान पाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए। ये सारे वस्तु जो है, हम जब आत्मा के प्रॉपर विज्ञान को समझ जाएंगे। इसीलिए भगवान अर्जुन जब युद्ध से विमुख हो रहा था, तो भगवान ने उसको आत्मा का ज्ञान सुनाना शुरू किया। दूसरे अध्याय में भगवान जो है आत्मा का ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया अर्जुन को। अर्जुन को ये नहीं बता रहे कि तुम युद्ध में क्यों डर रहे हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, चलो तुम नहीं लड़ोगे तो मैं लड़ूंगा, तुम्हारी सहायता मैं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया, यू आर नॉट दिस बॉडी, डोंट फियर, यू विल नेवर डाई, तुम कभी मरोगे नहीं, कोई तुम्हें मार नहीं सकता है, तुम आत्मा के रूप में शाश्वत हो, कभी नष्ट नहीं होने वाले हो। सो इस तरह से आत्मा का विज्ञान बताते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आत्मा है क्या, यानी हु एम आई। एक घटना घटी थी हमारे एक इस्कॉन के एक वन ऑफ द लीडिंग सन्यासीस, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज। ही इज अ वेरी डायनामिक एंड अ वेरी एक्टिव पर्सन इन इस्कॉन। सो वो एक बुक लिख रहे थे और उस बुक को छापने के लिए कलकत्ता में एक प्रेस में दिए थे। तो वो बुक को देखने के लिए गए कि वो छापने वाला जो है प्रेस में, उसको कितना उसमें वर्कआउट किया है, उसको देखने के लिए गए। तो जब वो गए तो उसके वर्कशॉप में घूम रहे थे, और घूमते घूमते उनकी नज़र एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर पड़ी। किसी प्रिंसिपल ने एग्ज़ाम्स पेपर दिया था छापने के लिए, और वो प्रिंसिपल वो एग्ज़ाम पेपर लेने के लिए पर्सनली आया हुआ था। ऑल्दो ही इज़ एन अमेरिकन पर्सन, बट ही बिकॉज वो बंगाल में बहुत सालों से रह रहे हैं, सो ही नो हाउ टू स्पीक बंगाली, हाउ टू रीड बंगाली, हाउ टू राइट बंगाली, बंगाली हिंदी और बहुत सारी भाषाएं जानते हैं वो, भारत देश में रह करके भी, यद्यपि वो अमेरिकन है। तो वो ऐसे ही जस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे, स्कैन थ्रू कर रहे थे, तो उन्होंने वो पेपर देखा, तो पेपर को पढ़ने लगे। उस पेपर में एक क्वेश्चन था, तोमार परिचय की, बांग्ला में लिखा था, तोमार परिचय की, आपका क्या परिचय है। तो फिर ये प्रश्न को देख करके उन्होंने वो प्रिंसिपल से पूछा कि आपके ये प्रश्न पत्र में यू आर राइटिंग वन क्वेश्चन, हाँ, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर आइडेंटिटी, तो व्हाट क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का तुम्हार परिचय की, इस प्रश्न का आप क्या उत्तर एक्सपेक्ट करते हो लोगों से, व्हाट दे शुड गिव द आंसर, सपोज यू आर आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ यू विल आंसर, और एनीबडी एल्स, आपका नेशनैलिटी बताएंगे, है ना, आपका सेक्स बताएंगे, आपका हाइट बताएंगे, वेट बताएंगे, आपकी राष्ट्रीय, आपका कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते वो बताएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि हम महाराष्ट्रियन हैं, कुछ लोग बोलेंगे मैं गुजराती हूँ, है ना, कुछ लोग बोलेंगे मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, साउथ का रहने वाला हूँ, ऑल दीज थिंग्स। उन्होंने बोला, इफ़ समवन आंसर्स लाइक दिस, तो आप उसको कितने मार्क्स दोगे। तो उन्होंने कहा कि आई विल गिव हिम फुल मार्क्स। उन्होंने कहा सपोज सम स्टूडेंट्स राइट आमार परिचय आमी आत्मा, तब आप उसको कितना मार्क्स दोगे? तब उस प्रिंसिपल ने कहा कि वी डोंट अप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ आंसर सो विल गिव हिम जीरो. सो उन्होंने कहा कि फॉर रॉन्ग आंसर्स यू विल गिव फुल मार्क्स एंड फॉर राइट आंसर यू विल गिव देम जीरो. सो व्हाई दैट इज? क्यों? क्योंकि उस प्रिंसिपल का भी उस प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं आता है. यू अंडरस्टैंड? हमारा असली परिचय क्या है? हम ये शरीर है, हम अभी इसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे. उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा. विल स्टार्ट विथ ए स्टोरी. यू लाइक टू हियर दिस? एक राजा थे. मैंने ये स्टोरी बताया होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा पहले भी. एक राजा थे, तो जब वो रात को सो जाते थे तो सपना देखते थे, स्वप्न देखते थे, और स्वप्न में देखते थे कि ही इज़ अ बटरफ्लाई, वो एक तितली है, और तितली बनके एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे, ऐसे अनेक फूलों पे उड़ उड़ करके उसके मकरंद को कलेक्ट करते थे. और जब निद्रा खुलती थी तो वो देखते थे कि वो एक राजा है, राजसी लिबास पहना हुआ है, राजमहल में राजसी पलंग पे सो रहे हैं. और जब वो ये सपना हर रोज़ देखने लगे तो ही डेवलप्ड ए काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कन्फ्यूजन, उनको थोड़ा भ्रम हो गया. वो चिंतित हो गए कि मेरा एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, हु एम आई. फिर उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया, क्योंकि मिनिस्टर्स आर सपोज टू बी द लर्नेड पीपल टू गाइड इम प्रॉपरली. सो उन्होंने मिनिस्टर्स को बुलाया और मिनिस्टर्स के सामने ये घटना बताई. जब भी मैं सो जाता हूँ तो हर बार मैं देखता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं एक तितली हूँ. पर जब मैं उठ जाता हूँ तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ और राजा हूँ, और मेरा इस तरह का पावर है, पोजीशन है. सो 8 घंटा तो दिन में मैं सोता भी हूँ, और 8 घंटा ऑलमोस्ट जागता रहता हूँ, 8 से 16 घंटा जागता रहता हूँ, बहुत सारे कार्य करता रहता हूँ. पर जब मैं सोता हूँ तो सोते ही मुझे यही सपना दिखाई देना शुरू हो जाता है. तो हु एम आई एक्चुअली, मैं कौन हूँ? भ्रम में पड़ गया हूँ मैं, आप लोग मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ. तो सम ऑफ द मिनिस्टर्स, उसमें से कुछ मिनिस्टर कहने लगे राजा साहब आप तो तितली हैं, और कुछ मिनिस्टर्स कहने लगे कि नहीं नहीं राजा साहब आप तितली थोड़ी हैं, तितली तो कीड़ा होती है, आप तो राजा हैं, मनुष्य हैं. फिर भी राजा का भ्रम दूर नहीं हो रहा था. तो उसमें से एक मिनिस्टर ने कहा राजा साहब आप न तो तितली हैं और न ही तो मनुष्य हैं, आप ये दोनों से परे शाश्वत आत्मा हैं जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस गया है ना. कुछ काल के लिए आप सोचते हो कि आप तितली हो, कुछ काल के लिए आप सोचते हो आप मनुष्य हो, पर ना तो आप मनुष्य हो ना तितली हो. जब सोते हो तो तितली का जो स्वप्न देखते हो सकता है क्षणभंगुर है, कुछ काल के लिए है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा के लिए है. और जागृत रूप में ये भी एक लंबा स्वप्न है, ये भी एक लंबा स्वप्न है. कभी कभी हम ये शरीर में सोए रहते हैं और सोते ही रहते हैं, बाद में जब उठते हैं तो किसी और शरीर में उठते हैं. और ये शरीर को कोई लोग ले जा करके नष्ट भी कर दिए गए रहते हैं. तो फिर हम जब उठते हैं तो हमको लगता है ये मनुष्य का जीवन एक स्वप्न था, है या नहीं है? तो हु एम आई एक्चुअली, क्या मैं ये मनुष्य हूँ? एक बार प्रभुपाद जी ऐसे प्रवचन दे रहे थे अमेरिका में, तो दो बहुत मोटी मोटी औरतें बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी. वो चलते चलते वहाँ से जा रही थी, और प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो माइक्रोफोन पे उन्होंने लेक्चर को सुना. उसमें प्रभुपाद जी कह रहे थे यू आर नॉट दिस बॉडी, हाँ यू आर सोल, हाँ अवे फ्रॉम द बॉडी, अपार्ट फ्रॉम द बॉडी, द सोल हु इज ट्रैप्ड इन दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी. सो वो सुन करके उन लोगों को इतने रिलीफ मिला, इतनी प्रसन्नता हुई कि माय गॉड वी आर नॉट दिस बॉडी विच वी आर कैरिंग, है ना, एंड वी आर डिफरेंट देन दिस बॉडी, वी आर ट्रैप्ड इन दिस बॉडी. दे सैट फॉर द लेक्चर, दे स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट हु वी आर एक्चुअली, इफ वी आर नॉट दिस बॉडी देन हु वी आर एक्चुअली. तो कौन हूं मैं? क्या मैं पुरुष हूं? क्या मैं स्त्री हूं? पुरंजन की स्टोरी आती है श्रीमद् भागवत में। पुरंजन एक जन्म में पुरुष रहता है, राजा रहता है, और मृत्यु के समय में अपनी पत्नी का स्मरण करते करते वो शरीर त्याग देता है और विदर्भ देश में विदर्भ की राजकुमारी के रूप में पैदा हो जाता है। और उसको याद है कि मैं पहले कौन था, तो उसको ये याद आता है कि मैं पहले एक राजा था और अब मैं एक लड़की हो गया, राजकुमारी बन गया। एंड वॉट टू स्पीक ऑफ दैट टाइम, अब भी इस जन्म में भी यहाँ पर भी यू मे बी सरप्राइज टू हियर इन द लंडन देर इज अस्कॉन, देर आर टू स्कॉन टेम्पल्स, वन एट सोहो स्ट्रीट एंड वन एट भक्ति मैनर बोलते हैं उसको, भक्ति वेदांत मैनर। सो दिस टू टेम्पल्स आर देर, एट द सोहो स्ट्रीट टेम्पल देर वॉज ए ब्रह्मचारी। सो ये ब्रह्मचारी जब मंदिर में रहता था तो ही यूज टू वॉच टू ए लेडी हु यूज टू विजिट द टेम्पल, और बाद में उसकी मौत हो गई somehow or other, and then he appeared as a lady in that same area and became connected to that same temple, and he still realizes his previous life and he knows that in my previous life I was a brahmachari and now in this life I am a lady. Same atma, earlier in a male's body, earlier now in the female's body. And some people these days only they change their sex. है ना, ऐसे बहुत सारे स्टोरी हैं। शिखंडी का स्टोरी है, शिखंडी वॉज बॉर्न ए फीमेल बट ही चेंज्ड हिज सेक्स। तो इवन हमारा बॉडीली कंडीशंस चेंज हो जा सकता है, इसी लाइफ में चेंज होता है। सो हु एम आई एक्चुअली, मैं कौन हूँ, क्या मैं कोई पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, कोई बिजनेसमैन हूँ, क्या खिलाड़ी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, जापानीज हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, कौन हूँ, हु एम आई। ये हमारा शरीर है, ये शरीर की अनेक उपाधियाँ है, लिंग है, कुछ लोग कहते हैं पुरुष का लिंग है, कोई कहता है स्त्री का लिंग है, पर पुरुष का होकर के स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो सकता है। अभी अभी रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में एक आया था स्टोरी कि कोई लड़का जो है वो उसका आचरण स्त्री की तरह से था और उसने पर्सनली जा करके पैसे कमा करके जयपुर में रहता है वो, जयपुर के पास में कोई एक छोटा सा शहर है वहाँ पे रहता है, और वहाँ पे उसने पर्सनली अपना सेक्स चेंज करा लिया। उसके माँ बाप भी एग्री करते हैं कि हमारे घर में कोई बेटी नहीं थी तो हमारा बेटा ही एक बेटी में कन्वर्ट हो गया, दे आर हैप्पी विद दैट। और वो कहता है कि आई एम वेरी कम्फर्टेबल बिकॉज इवन इफ आई वॉज इन अ मेल्स बॉडी आई वॉज फीलिंग लाइक ए फीमेल, मैं एक लड़की की तरह से मेरा आचरण था, चलना फिरना, बोलना, उठना, बैठना, सब कुछ लड़की की तरह से था। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन द मेल्स बॉडी सो आई डिसाइडेड, और मैं जाकर के डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से बात किया, और डॉक्टर ने कहा कि तुमको एक साल तक लड़की की तरह से पूरी तरह से रहना पड़ेगा, तब जा करके मैं एक साल के बाद में तुम्हारा ऑपरेशन करूँगा, एंड दैट ऑपरेशन बिकेम सक्सेसफुल, नाउ ही इज ए फीमेल इवन इन दिस बॉडी। सो लिंग बदलता है, हम मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में चले गए तो इसी जीवन में हमारा नाम बदल जाएगा, हमारा शरीर बदलता है, बदलता है कि नहीं बदलता है। हाँ, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। जब माँ के गर्भ से हम निकलते कितना बड़ा रहते हैं, इतना बड़ा चूहे की तरह से रहते हैं, है ना, ना तो हाथ पैर ठीक से फंक्शन करता है, ना डेवलप हुआ रहता है, और वो धीरे 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 बढ़ने लगता है। और मेडिकल साइंस कहता है कि हर 7 साल के बाद में हमारे शरीर की पूरे कोशिकाएं बदल जाने के बाद में हमारा शरीर जो है वो कम्प्लीटली न्यू शरीर होता है, हमारा ओल्ड शरीर खत्म। एवरी 7 ईयर वी आर कम्प्लीटली न्यू पर्सन, बट आर वी एबल टू रियलाइज दैट, हमारा शरीर बदल चुका है लेकिन मैं नहीं बदला हूँ, मैं वही हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, और मैं कहता क्यों, हमारा शरीर बदल गया है, मैं नहीं बदला हूँ, बोलता हूँ मैं वही हूँ। हाँ, जो मैं बचपन में फील करता था बुढ़ापे में भी वही फील करता हूँ कि मैं वही हूँ, है ना, पर मैं सोचता हूँ कि अब मेरा शरीर जो है वो बूढ़ा हो गया, वो काम करने के लायक नहीं रह गया। तो भगवान कहते भी हैं कि हमारा शरीर तो प्रतिदिन बदलता है, कौमारम कुमारपन से यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, इस तरह से एक एक देह इस जीवन में ही छूटते चला जा रहा है, तो फिर अंत में जो देह छूट करके फिर दूसरे किसी शरीर में चला गया तो उसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत है, भगवान कहते हैं अर्जुन से। सो हमारा शरीर बदल रहा है, हमारी नागरिकता बदल सकती है, इंडियन हो जाके अमेरिकन ग्रीन कार्ड ले लिया तो अमेरिकन हो गया, है ना, जर्मन में चला गया जर्मनी का नागरिकता ले लिया तो जर्मन हो गया मैं। सो हमारी नागरिकता हम बदल सकते हैं, सो हम अभी भारतीय शरीर कहलाते हैं, और कहीं और जाने के बाद में वहाँ की नागरिकता ले लिए तो कौन सा शरीर कहलाएंगे, वहाँ का शरीर कहलाएंगे, पर शरीर तो शरीर है, शरीर न तो भारत का है न तो अमेरिका का, ये पंच महाभूत से बना हुआ है, चाहे वो अमेरिका में बने चाहे अमेरिका के बाहर बने, कहीं भी बने वो पंच महाभूत से बना हुआ है। किसी भी व्यक्ति का शरीर पंच महाभूत को छोड़ करके और किसी चीज़ से नहीं बना हुआ है। सो हमारी नागरिकता बदलने पर भी मैं वही व्यक्ति रहता हूँ, मेरी नागरिकता बदल गई लेकिन मेरा अस्तित्व तो नहीं बदला, मैं आत्मा के रूप में नहीं बदला, शरीर के रूप में मैं वही हूँ, मेरा शरीर परिवर्तन होता चला जा रहा है, लेकिन चाहे कहीं भी रहूँ मेरे शरीर का पोषण भी वही अन्न जल इत्यादि से ही हो रहा है, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, तो मैं नहीं बदल रहा हूँ। पेशा बदल सकता है, ओहदा बदल सकता है, धारणाएँ बदल सकती हैं, सब कुछ बदल सकता है हमारा। धारणाएँ मतलब कुछ लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं फिर बाद में कहने लगेंगे नहीं मैं क्रिश्चियनिटी को मानता हूँ, मैं क्रिश्चियन बन गया। तो जैसे कुछ लोग अपना नाम बदल देते हैं, जोनाथन कामले पहले कामले था और अभी उसने अपना नाम बदल करके क्रिश्चियन नाम रख लिया लेकिन सरनेम नहीं बदला। जैसे बहुत सारे लोग आंध्रा में, वो लोग क्रिश्चियन तो कन्वर्ट हो गए हैं लेकिन उनका जो हिंदू ट्रेडिशन है वो अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं, वो अभी भी श्रीनिवास गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा अभी भी बोलते रहते, इवन उनका जलूस लेके जाते फिर भी बीच बीच में वही बोलते, क्यों, क्योंकि कल्चर वैसा ही है उनका। सो धारणाएं बदल सकती हैं लेकिन व्यक्ति नहीं बदलता है, व्यक्ति वही रहता है, पर मैं नहीं बदलता, तो मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। वैज्ञानिक लोग इस विषय में कहते हैं कि हमारा ये मनुष्य शरीर जो है एक 60 किलो पाउंड, 60 पाउंड के मानव के शरीर में इतने सारे केमिकल्स होते हैं, ये शरीर इन सारे केमिकल से बनता है। इस केमिकल का अगर आप मार्केट में वैल्यू निकालेंगे, ये डॉक्टर हैरी मेंशन कहते हैं, हाँ, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी फ्रॉम इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ही हैज़ गिवन दिस इज़ द डेटा ही हैज़ गिवन। सो इसके हिसाब से अगर ये सारे मेडिसिन को आप जमीन जा करके मार्केट में ख़रीदो तो इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत ज़्यादा या 400-500 रुपए होगी। तो ये हमारा जो शरीर है इसकी कीमत कितनी है, 60 किलो का एक शरीर जो है उसकी कीमत कितनी है, हाँ, कौन अमूल्य है, शरीर या मैं? हाँ, मैं अमूल्य हूँ। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैं अमूल्य हूँ। हम लोग ये नहीं मानते हैं कि हम सचमुच एक बैग केमिकल हैं, है ना? अगर कोई मुझे संबोधित करे, वो बैग ऑफ केमिकल, वेयर आर यू गोइंग, हाँ, लिसन टू मी, विल यू ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सन? वी वॉन्ट दैट समबडी शुड कॉल अस विथ डिग्निटी बाई नेम, राइट, नॉट जस्ट ए बैग ऑफ केमिकल। एंड साइंटिस्ट क्या कहते हैं हमारा, हम किससे बने हुए हैं, हम कौन है, केमिकल हैं, वी आर इवॉल्व फ्रॉम केमिकल, हमने अभी पिछली बार पढ़ा है ना, वी आर इवॉल्व फ्रॉम केमिकल, बट एक्चुअली वी आर नॉट इवॉल्व फ्रॉम, आवर बॉडी कैन बी इवॉल्व फ्रॉम केमिकल, इसीलिए बॉडी जब कट हो जाता है तो केमिकल से ठीक भी हो जाता है ना, जैसे धागे का कपड़ा बनाते हैं और अगर वो फट जाता है तो उसको सिलते किससे हैं, धागे से सिलते हैं। तो उसी तरह से ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर जो है, ये पंच महाभूत से ही इसको ठीक भी किया जा सकता है, उसी से ब्रिजिंग किया जा सकता है। अगर ये पतरा फट जाए तो आप इसको कोई टैबलेट खिला करके जोड़ सकते हैं, उसको कैसे जोड़ेंगे, उसको जोड़ने के लिए आप वही लोहे का वेल्डिंग या लोहे का ब्रिजिंग करेंगे, है ना? तो हमारा शरीर को बनाने के लिए भी वही पंच महाभूत चाहिए, पर हमारा शरीर और मैं अलग अलग हूँ, मेरे लिए क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये जानना है। तो कीमत किसकी है, हमारी है, न कि शरीर की। यदि नहीं तो हमारी पहचान क्या है, हम कौन हैं, हाँ, ये जानने की कोशिश करेंगे। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि तुम यह नश्वर देह नहीं हो अपितु आत्मा हो, यंत्र रूढ़ानी मायाया। 18.61 में भगवान कहते हैं कि जैसे यंत्र के ऊपर एक ऑपरेटर रहता है, उसी तरह से ये शरीर रूपी यंत्र के ऊपर आरूढ़ आत्मा जो है इसका एक ऑपरेटर है। शरीर जीवित प्रतीत होता है किसके कारण? आत्मा की मौजूदगी के कारण। जैसे अगर आप हैंड ग्लव्स पहन लिए हैं तो हैंड ग्लव्स जो है वो निर्जीव है, लेकिन वो हमको पंजे की तरह से दिखता है ना? क्यों दिखता है? अगर हाथ में से निकाल दे तो वो पंजे की तरह से दिखेगा, इट विल बिकम क्रम्बल्ड, पुट लाइक एनीथिंग। अगर उसको ग्लास में डाल दो तो भर के उसके, या बॉटल में डाल दो तो उसका सेप अक्वायर कर लेगा। सो उसी तरह से आत्मा के ऊपर जिस चीज का आवरण चढ़ा दो, ये हमारा शरीर जो है इट्स लाइक ए ग्लव। हाँ, जैसे देखो कभी कभी बच्चे लोग जो है किसी खरगोश का या किसी हिरन का या किसी शेर का ये पहनते हैं ना ड्रामा के दौरान, हाँ, और डांसिंग करते हैं, तो क्या वो शेर या खरगोश या हिरन है? इट्स अ पर्सन हु हैज टेकन अप द कस्ट्यूम ऑफ दैट। सो सिमिलरली वी आर ऑल आत्मा, एंड आत्मा हैज टेकन अप द कस्ट्यूम ऑफ डिफरेंट बॉडी विच आर 84 लाख स्पीसीज। बट आत्मा जो है वो ये सारे कस्ट्यूम से डिफरेंट है, जैसे मैं खरगोश के कस्ट्यूम से, इत्यादि के कस्ट्यूम से डिफरेंट हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है, हाँ, तो एक्सीडेंट में 25 लाख की कार है और वो नष्ट हो गई है, तो और एक आदमी भी उसमें घायल हो गया है, तो कीमत किसकी ज़्यादा है, कार की या आदमी की? हाँ, इंसान की कीमत ज़्यादा है। अभी तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसका केमिकल का कंपोजिशन कितना है शरीर का, 410 रुपये उसका केमिकल कंपोजिशन है ना, और कार की कंपोजिशन कितना है, तो कौन ज़्यादा कीमती है? पर हम बचाते किसको है, शरीर को बचाते हैं, या अगर वो एक्सीडेंट में वो व्यक्ति मारा गया, मर गया, तब हम क्या करते हैं? तो फिर और 150-400 रुपये खर्च करके और फिर उसको क्या करते हैं, उसको अपनी आँखों से भी ओझल करवा देते जला करके उसको नष्ट कर देते हैं, कल से दिखना मत, है ना, और 1000 रुपये खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी जान बची है तो आप करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। तो खर्च किसके लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं या उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जो वो शरीर के अंदर रहता है? जब वो उस शरीर से निकल गया तब आपने उसी शरीर का क्या किया, उसको जला दिया। तो वो व्यक्ति कौन था, शरीर था, आत्मा था, है ना? या 410 रुपए के इंसान किसको बचाएंगे आप? देखिए, कार जो है वो शरीर के जैसा है और चालक जो है वो आत्मा के जैसा है। जैसे कार के अंदर ध्वनि करने के लिए हॉर्न होता है, देखने के लिए हेडलाइट होता है, चलने के लिए चार चक्के होते हैं और पानी आपूर्ति के लिए रेडिएटर होता है, उसी तरह से मनुष्य के लिए बोलने के लिए मुंह होता है, देखने के लिए आँखें होती हैं, खून पंप करने के लिए हृदय होता है और चलने के लिए पैर होते हैं। डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में क्या डिफरेंस है? उसमें भी आँख है पर दिखता है उसको, क्यों नहीं दिखता है? अगर हेडलाइट में, गाड़ी का हेडलाइट बहुत फर्स्ट क्लास है, हाँ, लेकिन क्या वो अपने आप से देख के चलता है? उस हेडलाइट के थ्रू देखता कौन है, ड्राइवर देखता है, है ना? हेडलाइट के थ्रू ड्राइवर देखता है। उसी तरह से ये शरीर की आँख के थ्रू कौन देखता है, आत्मा देखती है। शरीर के कान के थ्रू सुनता कौन है, आत्मा सुनती है। शरीर के मुख के थ्रू बोलता कौन है, डेड बॉडी में ये सभी चीजें हैं लेकिन ना वो बोलता है, ना वो सुनता है, ना वो देखता है, ना वो चलता है, ना तो वो खाता है पीता है, कुछ भी नहीं करता है। लेकिन जब उसके अंदर आत्मा होती है तो चाहे वो कितना भी कंडीशन खराब है फिर भी देखता है, बोलता है, सुनता है, प्रतिक्रिया करता है, सब कुछ करता है। तो एक्चुअली कौन करता है वो सारे चीज, इट्स नॉट दैट बॉडी, बॉडी से परे आत्मा करती है वो। चालक के बिना कार एक इंच भी नहीं हिल सकती है, उसी तरह से आत्मा के बिना ये हमारा शरीर बेकार है और मृत है। जैसे पिंजरा और पक्षी, पक्षी और पिंजरा में दोनों कौन इम्पॉर्टेंट है, पक्षी इम्पॉर्टेंट है, पिंजरा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर हम पिंजरे का ही रख रखाव करेंगे, पक्षी को भोजन नहीं खिलाएंगे, हाँ, तो पिंजरा चाहे कितना भी सुंदर बनाएंगे लेकिन पक्षी नहीं रहेगा तो पिंजरे का क्या वैल्यू है, कुछ वैल्यू है? उसी तरह से हम लोग दिन रात एक्चुअली वही कर रहे हैं, हम पिंजरे का ही रख रखाव कर रहे हैं, उसी को रंग रोगन कर रहे हैं, उसी को धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके अंदर जो पक्षी है उसको खिलाना भूल गए, और वो न खाने के कारण पक्षी जो होता है एक दिन मर जाता है। तो हम शरीर का ही ज़्यादा चिंतन में रहते हैं, शरीर की चिंता में पड़े रहते हैं, और शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा के बारे में कभी कुछ सोचते नहीं है। बेसिकली क्यों नहीं सोचते हैं? क्यों? क्योंकि हम आत्मा के ज्ञान को नहीं जानते हैं, और इस जगत में हमारी सबसे बड़ी दुर्बुद्धि ये है जिसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। देह को ही आत्मा मानना ये सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। अपने शरीर को आत्मा मानना ये सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। और हमारी इतना ज़्यादा शिक्षा पद्धति है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक पढ़ाई करते करते हम लोग बहुत सारी डिग्रियाँ हासिल कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम कौन हैं अपने बारे में जानकारी हासिल करना भूल जाते हैं। हु एम आई? और उसके बाद में क्या होता है, अपने बारे में जब जानकारी हासिल करना भूल जाते हैं तो एक बार अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, दूसरे के बाद में फिर वही चीज़ जो है अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, हमारा कैरियर नष्ट हो जाता है। हम इस बार मनुष्य बन करके ये कर रहे हैं, बहुत चहक रहे हैं, कुछ समय के बाद में कुत्ता बिल्ली घोड़ा बकरी बन करके फिर यहाँ वहाँ दौड़ेंगे, है ना? यू रिमेम्बर, मैंने आप लोगों को एक बार कैलाश की स्टोरी बताई थी, याद है किसी को? श्रीमद् भागवत में कैलाश की एक स्टोरी आती है। कैलाश नामक एक सदगृहस्थ थे, एक गाँव में रहते थे, तो एक बार नारद ऋषि वहाँ से गुजरते हैं। नारद ऋषि का वो अपने घर पर स्वागत करते हैं, नारद ऋषि की बहुत सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनको रेस्ट करवाते हैं। नारद ऋषि उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। नारद ऋषि कहते हैं कि कैलाश, मैं इस समय भगवान के पास वैकुंठ जा रहा हूँ जहाँ कोई कष्ट नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मैं तुमको लेके जाऊँगा वहाँ, अगर भगवान के पास ले चल सकता हूँ, तुमको इस भौतिक जगत से मुक्ति करा दूँगा। तो कैलाश ने कहा कि नारद जी, आपका प्रपोजल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं तो अभी बहुत यंग हूँ और मैंने इस जगत में अभी तक कुछ भोग नहीं किया, इसका अनुभव नहीं किया, तो मेरे ऊपर थोड़ी कृपा करो, मुझे कुछ मोहलत और दे दो जिससे कि मैं इस जगत में शादी विवाह कर लूँ, फिर स्त्री बच्चों का भोग कर लूँ थोड़ा बहुत, फिर मैं चलूँगा। नारद ऋषि ने बहुत समझाया, लेकिन जब वो इस तरह से आग्रह पकड़ के बैठा तो नारद ऋषि ने कहा ठीक है, मैं कभी और आऊँगा। तो बहुत काल के बाद नारद ऋषि फिर से आए। जब नारद ऋषि आए तो उस समय कैलाश का विवाह हो गया था, उसके दो चार बच्चे हो गए थे, और नारद ऋषि बहुत खुश, वो कैलाश बहुत खुश था। नारद ऋषि आए तो फिर से उसने कैलाश ने नारद ऋषि को रिसीव किया, और नारद ऋषि ने कहा कैलाश, अब तो तुमने भोग कर लिया, तुमको अनुभव हो गया, बच्चे हो गए, पत्नी है, सब कुछ है, अब तो चलो। कहा नारद जी कैसे चलूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर मैं चला गया तो इनका देखभाल कौन करेगा, हाँ, इनकी चिंता कौन करेगा, जगत में कोई ऐसा है नहीं जो बिना बाप के बच्चों को पाल ले। तो इसीलिए जब तक ये बच्चे पल नहीं जाते हैं, पढ़ लिख नहीं लेते हैं, कुछ नौकरी धंधा नहीं कर लेते हैं, तब तक मैं इनका थोड़ा केयर करना पड़ेगा, इसलिए इस बार भी मुझे आप थोड़ा मौका दे दीजिए। तो नारद ऋषि, तो कैलाश के बच्चे बड़े हो गए थे, और नारद ऋषि आकर के कैलाश को पूछते, उनके बच्चों से पूछते, उनके बच्चों के बच्चे हो गए थे। नारद ऋषि कैलाश को बच्चों से पूछते हैं कि कैलाश कहाँ है, मैं यहाँ पे एक व्यक्ति रहा करता था कैलाश, जब तुम छोटे थे तुम्हारे पिता कहाँ गए? तो बोले वो तो कब का शरीर त्याग दिए, हाँ, शरीर छोड़ करके चले गए। तब तक अचानक वहाँ से एक कुत्ता भाँव भाँव करता हुआ आया और कहा नारद नारद मैं यहाँ हूँ, हाँ। नारद ऋषि तो चूंकि वो सब कुछ जानते, उन्होंने देख लिया कि ये कुत्ते के शरीर में कैलाश बैठा है। उन्होंने बोला कैलाश ये क्या हो गया, तो मनुष्य थे अभी कुत्ता बन गए, चलो कम से कम अब तो ये शरीर छोड़ो, निकलो यहाँ से। कहा नारद जी मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मैंने बड़ी मेहनत से धन कमाया, ये मेरे बच्चे जो है ये ठीक से केयर नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं दिन रात यहाँ बैठा रहता हूँ कि कोई इस घर में घुस के मेरा धन चुरा ना ले, ये बच्चे बड़े लापरवाह हैं, हाँ। तो नारद बोले कैलाश तुम देखो अभी कुत्ता बन गए फिर भी चलना नहीं चाहते हो। तो कहा कि और थोड़ा मौका दे दीजिए। नारद फिर चले गए। वापस कई सालों के बाद में जब आए तो फिर पूछने लगे कि वो तुम्हारे घर पे एक छोटा कुत्ता था, वो किधर गया? उसके बच्चे तो नहीं समझ पाए कि नारद और कैलाश में क्या बातें हो रही है, कुत्ता रूप कैलाश में। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे घर पे एक कुत्ता था, वो कहा, अरे वो तो कब का मर गया। हाँ, नारद इसी बड़े चिंतित हो गए, सोचने लगे कैलाश कहाँ गया पता नहीं। ये सोच करके क्या उसके खेतों से जा रहे थे तो अचानक खेत में से एक बड़ा सांप मुंडी हिलाता हुआ नारद जी पुकारता हुआ आया। नारद जी ने पहचान लिया कि ये कैलाश है। बोले, अरे कैलाश, ये तुम्हारी क्या दुर्गति हो गई? कहा, क्या करूं नारद जी? बोले, चलो अब तो छोड़ो ये शरीर को, चलो। कहा, नारद जी, आप जानते नहीं, मेरे बच्चे जो हैं वो लोग ठीक से केयर नहीं करते हैं। ये यहाँ पे फसल लगाए हुए हैं, इस फसल को चूहे आके खा जाते हैं, तो उन चूहों से बचाने के लिए फसल को मैं यहाँ पे पड़ा रहता हूँ। अगर मैं नहीं बचाऊँ तो बच्चे तो ध्यान ही नहीं देते, चूहे सारी फसल खा जाएंगे, तो इसीलिए मुझे और कुछ समय दे दो। नारद ने बोला, अच्छा ठीक है, तुमको समय देता हूँ मैं। नारद गए वापस लौट के उनके घर के पास, उनके ही बच्चों से कहा कि तुम्हारा खेत में एक बड़ा सांप निकला हुआ है, तुम लोग देर सवेर वहाँ जाओगे तो कभी भी वो सांप तुमको डंक मार सकता है, डस सकता है। तो इसीलिए जैसे उन लोगों ने सोचा, कहा कि साधु जी, नारद, सांप निकला है, चलो देखते हैं कहाँ सांप है। डंडा लाठी लेकर के निकल गए सब और नारद के साथ आने लगे। और वो सांप ने सोचा, नारद मेरे बच्चों को मेरे से मिलने के लिए बुला के लेके आ रहे हैं, तो और फन उठा करके उनका अभिवादन करने लगा। नारद ने कहा, देखो वो फन उठा करके घुमा रहा है ना, वही सांप है, तुम्हारे खेत में रहता है, वो उसको मारो। तो फिर उसके ही बच्चों ने मिल करके उसका कचूमर निकाल दिया और फिर उसकी आत्मा को नारद जी पकड़े और लेकर के चले गए। क्योंकि नारद जी ने कृपा किया इसलिए लेकर के चले गए। हमको सुनकर के ये स्टोरी में हंसी आ रही है, लेकिन हम में भी बहुत सारे कैलाश हैं, है ना? हम लोग में भी बहुत सारे कैलाश हैं और हम सोचते हैं कि आत्मा के स्तर पे ये शरीर जो है, मैं शरीर हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर के अंदर आत्मा हूँ। और ये आत्मा जब इस जगत से अनवांटेड चीज़ों में आसक्त रहेगा, शरीर छूटता जाएगा लेकिन आसक्ति नहीं छूटेगी। जैसे कैलाश मनुष्य से कुत्ता बन गया, कुत्ता से सांप बन गया, उसकी आसक्ति नहीं छूटी, शरीर बदलता गया, उसी तरह से हमारी शरीर बदलती जाएगी। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम ये आसक्ति जगत की नहीं छोड़ेंगे। और जब तक इस जगत की आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार माता के गर्भ में प्रविष्ट होना पड़ेगा और गर्भ का दुख सहना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो दुख है उसको सहना पड़ेगा। इसीलिए अपने आप को पहचानना आवश्यक है। कहते हैं, स्वयं को पहचानो जिंदगी समर जाएगी। अगर हम अपने आप को पहचान लिए तो हम हमारा लाइफ को परफेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने अपने आप को नहीं पहचाना, उसके अनुसार कार्य नहीं किया, तो हम वास्तव में अपनी दुर्गति करते हैं। ये इस सेशन का ये जो स्लाइड है, इसमें हम शरीर का तो बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं। जैसे पक्षी पिंजरे में फंस गया है, उसी तरह से आत्मा भी भूमि जल अग्नि वायु और आकाश के निर्मित शरीर रूपी पिंजरे में फंस गया है। आत्मा के अस्तित्व को न समझने के कारण लोग पूरे जीवन केवल शरीर रूपी पिंजरे के रखरखाव में ही व्यस्त हैं, आत्मा के पोषण के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और हम में से ये बहुत सारे लोगों की यही स्थिति है। उसका मुख्य कारण है इग्नोरेंस। क्या हम एक केमिकल बैग हैं? अगर हम केमिकल बैग होते तो जरा मनुष्य की भावनाओं पे विचार कीजिए, कभी गम कभी खुशी, हाँ कभी क्रोध कभी आश्चर्य कभी तनाव कभी मायूसी, ये सारे इमोशंस आते हैं, किसके ऊपर आते हैं? चेहरा तो इंडेक्स है। चेहरा क्या है? इंडेक्स है ना? डेड बॉडी पे कभी आपने ये इमोशंस देखे हैं? बड़े गुस्से में दिख रहा है, हाँ बड़ा खुश है। उल्टा लोग क्या करते हैं, कोई मर जाता है तो आजकल वो डेड बॉडी पे भी प्लास्टिक सर्जरी होती है, जानते हैं आप? और उसको प्लास्टिक सर्जरी करवा करके लोग उसके चेहरे पे स्माइल लाते हैं और स्माइल ला करके फिर कॉफिन में बंद करते हैं और ले जा करके गाड़ देते हैं कि ही लेफ्ट हिज बॉडी विद स्माइलिंग फेस। दिस इज कॉल्ड मंडनम लोकरंजनम। जैसे डेड बॉडी के ऊपर अगर आभूषण लगाओ, गार्लैंड लाओ, अच्छे साड़ी पहनाओ, अच्छा पाउडर लगाओ, अच्छा पेंटिंग करो, उसके आईब्रोज बनाओ, सब कुछ बनाओ, व्हाट इज द यूज? उसका क्या यूज है? कॉफिन में डाल दो तो नीचे जाकर के वो सड़ करके नष्ट हो जाएगा, चिता पे डाल दो तो जल करके भस्म हो जाएगा, ऐसे ही फेंक दो तो सड़ के कीड़े खा जाएंगे उसको, है ना, और उसको टट्टी बना करके नष्ट कर देंगे। हमारा वास्तव में अस्तित्व क्या है? हमारा मतलब ये शरीर का, ये शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये शरीर अंततः तीन संज्ञा है इसकी, विडी विड 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 माने विष्ठा, कृमि माने कीड़ा, और भस्म यानी राख। ये तीन चीज बन जाएगा। ये इस तीन चीज में आपने हर एक व्यक्ति की यही दशा देखी होगी, हर एक शरीर की, है ना। कुत्ता इत्यादि रोड साइड में मर जाते हैं तो सड़के उसमें से सफेद सफेद कीड़े आ जाते, देखा होगा कभी, बहुत खराब दिखता है, लेकिन वो कीड़े उसके शरीर कन्वर्ट, उसका शरीर जो है वो कीड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, फिर कीड़े सूख करके नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर नष्ट हो जाता है। जब कीड़े पड़े होते तभी देखो कितना भयानक गंदा बदबू आता है उसमें से। ये शरीर है हमारा। या तो फिर कोई जो है अपने शरीर को मरने के बाद ले जा करके बावड़ी में लटका देते हैं, वहाँ चिड़िया और ये सब आकर के खा लेते हैं उसको, और खा करके यहाँ हमारे वाल्केश्वर में वहाँ पे पारसी लोगों का एरिया है, वहाँ पे एक बावड़ी है, कभी कभी हम लोग देखते हैं ऊपर बहुत सारे चील मंडराते रहते हैं, तो जब वो चील मंडराते हैं तब इंडिकेशन मिल जाता है कि वहाँ बावड़ी में कोई लटक रहा है। वो किसके लिए मंडराते हैं? मांस खाने के लिए। तो वो लोग नोच नोच के खाते हैं, हड्डी छोड़ देते हैं, वो हड्डी जो है वो नीचे जा करके बॉडी में जमा हो जाता है। और हिंदू लोग क्या करते हैं? उसको ले जा करके और चिता के ऊपर रख देते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट एक घंटे के अंदर वो क्या हो जाता है? राख में कन्वर्ट होके और धुएं में कन्वर्ट होकर के आकाश में उड़ जाता है। वायु अनिलम अथेदम भस्मांतम शरीरम। शरीर के भस्म होने पर शरीर का जो भी पांच तत्व है ग्रास शरीर का, वो पांच तत्वों में विलीन हो जाता है। वायु वायु में चली जाती है, पानी पानी में चला जाता है, जल के निकल जाता है, वो उड़ जाता है वाष्प बन करके। इस तरह से हमारे शरीर के पूरे घटक नष्ट, हम कहाँ जाते हैं? मैं कहाँ जाता हूँ? सारे ये चीजें जो है लिविंग बॉडी में दिखती है। लिविंग बॉडी मतलब उसके अंदर आत्मा है, ये इमोशंस डेड बॉडी में नहीं दिखते हैं। तो इमोशंस किसके हैं? आत्मा के हैं। आपने आपको कुछ समझना जो हम नहीं हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उस दिन मैंने आपको बताया था नेहरू का स्टोरी, याद है? नेहरू एक मेंटल असाइलम में गया था, कहा मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो पागलों ने क्या कहा? हम भी कुछ समय पहले यही सोचते थे। सो अगर हम ये शरीर नहीं हैं, फिर भी अपने आप को अगर मैं शरीर कहता हूँ तो मैं वो नेहरू से या वो पागलों से मैं कहाँ तक भिन्न हूँ, उनसे कहाँ बेहतर हूँ मैं? अगर मैं से कोई पूछे तो मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये हूँ, वो हूँ, हम लोग यही तो बताते हैं, पर हम कभी जानते हैं कि मैं कौन हूँ? आंसर परफेक्ट क्या होगा? मैं आत्मा हूँ, ये शरीर में फंस गया हूँ, ये परफेक्ट आंसर है। बट वी गिव दिस आंसर एंड पीपल एक्सेप्ट दैट आंसर ऑल्सो? नहीं, लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो वो बोलते हैं ना, जीवन क्या है एक रहस्य, अगर जो किसकी अगर समझ में आए, सुने इसे वो भी पछताए, कहे इसे वो भी पछताए, बताने वाला भी कन्फ्यूज्ड है, सुनने वाला भी कन्फ्यूज्ड है। सो जब हम रियलिटी ही नहीं जानते हैं तो रियलिटी से वाकिफ कैसे हो सकते हैं? इसीलिए भगवान कहते हैं उपदेश शांति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। जिन लोगों ने सच्चाई को जाना है, सच्चाई को अनुभव किया है, वो लोग आपको सच्चाई बता सकते हैं। तो सर्च फॉर सच पीपल हु कैन टेल यू अबाउट ऑल दिस रियलिटी। अगर ये मशीन जो है, मनुष्य का मशीन जो है, और एक रोबोट का भी शरीर जो है, वो भी एक मशीन है, वो भी मानव जैसा दिखता है ना, चलता है, बोलता है, देखता है, स्मरण रखता है, जवाब देता है, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चेतना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। वो मशीन है, उसमें कंप्यूटर है, कंप्यूटर ही उसकी आत्मा है, कंप्यूटर भी एक मशीन है। उसको जिस तरह से आप प्रोग्राम करोगे उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन उसके अंदर ये भावनाएं नहीं होंगी। लेकिन लिविंग एंटिटी में जिसमें आत्मा है उसमें देखिए आत्मा के अस्तित्व का क्या प्रमाण है। आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण हम ये तीन तर्कों से जानने की कोशिश करेंगे। एक तर्क है जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान और अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान यानी इंट्यूशनल नॉलेज, इंटीट्यूशन बोलते हैं ना, इंट्यूशन। दूसरा वैज्ञानिक प्रमाण से जानने की कोशिश करेंगे जिसमें हम लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड लाइफ आफ्टर डेथ, ये दो तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। और फिर शास्त्र के आधार पर जानेंगे कि आत्मा के बारे में क्या बताया गया है। सो तर्क के आधार पर सामान्य ज्ञान क्या है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, हर एक व्यक्ति का कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे देखिए क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जैसे हम लोग यहाँ पे ये जो दिखाया दे रहा है इसमें आप सूर्य को देख रहे हैं, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि दिन है? जब सूर्य को नहीं देख रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं कि दिन है? उजाला। किससे कह सकते हैं कि दिन है? क्यों? क्योंकि उजाला है। भले सूर्य नहीं देख रहा है लेकिन चारों तरफ उजाला है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, सूर्य है इसीलिए उजाला, बिना सूर्य के उजाला नहीं है, है ना? तो सूर्य है इसीलिए उजाला है। ये कैसे जानेंगे कि जहर है? जहर को कैसे पहचानते हैं? हाँ, उसके ऊपर स्लिप लगा रहता है, लिखा होगा जहर है, अगर नहीं लिखा है तो पी जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, I didn't understand what you said. Skeleton है। और मैं कहा कि अगर वो नहीं हुआ तो और टेस्ट करने के बाद में उसका इफेक्ट आएगा, है ना? उसके लक्षणों से जानेंगे। अगर टेस्ट किया तो क्या होगा? पोटेशियम साइनाइड, जहर है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। आज तक किसी ने बता नहीं सका कि उसका टेस्ट क्या है, इतना फास्ट रिएक्ट करता है वो। यस लिखते ही लोग मर जाते हैं, और यस से स्वीट भी होता है, सावर भी होता है, सॉल्ट भी होता है, वो कौन सा टेस्ट है? नॉट इवन ए सिंगल साइंटिस्ट कुड टेल दिस। क्यों? क्योंकि दे कुड नॉट असर्टेन इट। तो जहर है उसके लक्षण से जानते हैं। जहर से क्या होता है? उसको पीने से आदमी मर जाता है, है ना? इसलिए उसके लिए जहर है। पर अगर उसको किसी को खाने, उसको खाने से अगर कोई जिंदा रहता है, उसका शरीर बलिष्ठ होता है, तो उसके लिए वो क्या है? फूड है। इसलिए बोलते हैं वन मैंस पॉइजन इज अनदर मैंस फूड, और वन मैंस फूड इज अनदर मैंस पॉइजन। सो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम आत्मा को कैसे देखते हैं। आत्मा को उसके लक्षणों से जानते हैं। आत्मा अनुभव करती है, आत्मा सोचती है, आत्मा इच्छा प्रकट करती है, आत्मा जागरूक है, आत्मा चेतन है। और जहाँ जहाँ भी चेतना या ये जो ऊपर के लक्षण बताए गए ये दिखाई देता है, वहाँ सब जगह पे आत्मा मौजूद है। ये हम उसके लक्षणों से जानते हैं। क्या लक्षण है उसके, एक बार और देखिए। आत्मा अनुभव करती है, इच्छा प्रकट करती है, सोचती है, जागरूक है, चेतन है। तो ये चीज़ें हमको सर्वत्र दिखाई दे सकती हैं। कीड़े मकोड़ों में दिखाई देती हैं, पेड़ पौधों में दिखाई देती हैं, है ना, पशु पक्षियों में दिखाई देती हैं, मनुष्यों में दिखाई देती हैं। तो जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ आत्मा मौजूद है, ये हमको जानना चाहिए। सामान्य ज्ञान क्या कहता है? अभी अब यहाँ ये सीन देख के आपको क्या लगता है, यहाँ क्या हुआ है? सब लोग रो रहे हैं, कोई मर गया है, है ना? अगर मान लो किसी व्यक्ति का, मतलब एक माता जी समझो, उसका हस्बैंड मर गया है, तो वो माता जी क्या कहती है? गौर गोपाल प्रभु बहुत अच्छे तरह से राइमिंग तरीके से कहते हैं। वो माता जी कहेगी, अगर महाराष्ट्रीयन होगी तो क्या बोलती है वो, मादा नौरा माला सोडून गेला, है ना? हिंदी में बोलेगी तो मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, है ना? और अंग्रेजी बोलेगी तो माय हस्बैंड लेफ्ट मी। हाँ, अरे हु वॉज योर हस्बैंड? ही इज लाइंग डाउन देयर। वो तो वहीं सो रहा है ना, तो हस्बैंड किसका है, कहाँ गया? जिस बॉडी के साथ में तुमने जीवन भर निभाया है वो बॉडी तो अभी भी उधर ही पड़ा हुआ है ना, तो अभी क्या बोल रहे हैं ये मेरा हस्बैंड नहीं है। तो कौन है तुम्हारा हस्बैंड? जीवन भर सेवा किसका किया? कभी रियलाइज किया ये बॉडी मेरा हस्बैंड नहीं है, इसके अंदर जो आत्मा है वो मेरा हस्बैंड है? वो रियलाइज कब होता है? जब वो शरीर छोड़ करके जाता है तब, है ना। बेटा कहता है मेरे पिताजी चले गए। अरे कौन से पिताजी चले गए? पहले तो यही बॉडी चल के आता था और इसी के ऊपर तुम जाकर के चढ़ जाते थे, पापा पापा चॉकलेट लाए हो क्या, है ना। और आज आज उसी बॉडी को राम नाम सत्य है और ले जा करके माचिस लगा करके उसको पेट्रोल डाल के, घी डाल के, तेल डाल के, जो कुछ भी है डाल करके, लकड़ी रख करके उसको जला करके भस्म कर दिया। हाँ, वो तो तुम्हारा पिता है ना। ये कब रियलाइज हुआ कि ये शरीर मेरा पिता या पत्नी या पुत्र नहीं है? जब वो शरीर छोड़ करके चला गया। हमको रियलाइजेशन कितना लेट आया बताओ, है ना। जीवन भर हम किसको मानते रहे? शरीर को। सो ये यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कोई केमिकल का नुकसान नहीं हुआ है। अगर केमिकल का नुकसान हुआ तो केमिकल डाल के उसको ठीक कर सकते थे। जैसे उस दिन कहा ना, तुमने सारे केमिकल्स लाए हैं, इससे एक लिविंग एंटिटी क्रिएट करके दिखाओ। और वो साइंटिस्ट डॉक्टर डिस्मोडस, ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट। उसने बहुत सारे तर्क से कोशिश किया ये क्वेश्चन को अवॉइड करने का, लेकिन जब उसने पकड़ के रखा कि नहीं तुम सिद्ध करके दिखाओ, तो फाइनल उसने क्या कहा, आई कैन नॉट डू इट। लिविंग एंटिटी को नहीं क्रिएट कर सकते। शरीर केमिकल से बना है, फिर भी बिना लिविंग एंटिटी के ये कितना भी केमिकल का आवरण इसको चढ़ाओ, कितना भी इसका केमिकल कंपोजिशन परफेक्ट करो, इट विल नॉट वर्क। पर जब शरीर में आत्मा है तो इसको सब केमिकल कंपोजिशन काम करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी है। ये पंखा जो है इसमें अगर बिजली ना रहे तो इसको आप कितना भी रंग रोगन करो, अच्छा से मोटर वाइंडिंग करो, इसको अच्छा इलेक्ट्रिसिटी दो, पूरा इसके अंदर सब कुछ लगा दो, लेकिन स्टिल इट विल वर्क। सब चीज़ नए नए लगा दो, रिप्लेस कर दो सारे चीज़ें, बट विल इट वर्क? क्यों नहीं वर्क करेगा? क्यों? क्योंकि इसमें पावर नहीं है। उसी तरह से जब शरीर के अंदर आत्मा नहीं है तो शरीर कार्य नहीं करेगा। आत्मा के बिना शरीर मृत है। शंकराचार्य जी कहते हैं, यावत पवनो निवसति देहे तावत कुशलम प्रेक्षति गेहे गतवती वायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। राधा गोपीनाथ प्रभु का अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बताते हैं। उनका एक फ्रेंड था, बेंगलोर में रहते थे, कॉलेज में साथ में पढ़े हैं वो लोग। तो उसका विवाह हो गया था, अपने माता पिता के साथ में रहता था वो, माता पिता का भी देहांत हो गया बाद में, फिर वो अपनी पत्नी के साथ रहता था, बच्चे नहीं थे, पत्नी के साथ अकेला रहता था, या बच्चे थे तो भी वो कहीं दूर पढ़ाई करने के लिए चले गए थे, कुछ तो ऐसा कंडीशन था। तो एक दिन ये किसी ऑफिशियल कार्य से, इस्कॉन के काम से बेंगलोर गए। तो जब बेंगलोर गए तो सोचा कि चलो उस मित्र को भी मिल के आते हैं, अब यहाँ आए हैं तो उसको भी मिल लेते हैं। तो उसके घर गए तो पता चला कि वो देह शरीर त्याग करके चला गया है और उसके घर में उसकी पत्नी को छोड़ करके दूसरा कोई है नहीं। शाम का समय था, उसी समय वो देह त्याग करके चला गया। अभी पत्नी अकेली है घर में, और वो पत्नी जब ये गए तो देखा कि वो शरीर छोड़ करके चला गया है, तो पत्नी कहने लगी कि आप यहीं रुक जाओ, आप जाओ मत, ये रात को मैं इसके साथ अकेले कैसे रहूँगी। हाँ, तो वो बोले कि ठीक है मैं रुक जाता हूँ इसके साथ में, हाँ फिर तुम्हारे मित्र या बाकी जो भी रिलेटिव्स आएंगे उसके साथ मिलकर के क्रिमेट कर देंगे, पर अभी तो रात के समय में लोगों को आने में बहुत समय लगेगा। तो वो रोने लगी कि मुझे मत छोड़ करके जाओ, मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। तो वो कहने लगे कि एक समय ऐसा था जब ये पत्नी चाहती थी कि कोई ना रहे, हम दोनों ही अकेले एक कमरे में बंद हों, है ना, हम आपस में एक दूसरे के साथ में जो कुछ भी वार्तालाप करना है, जो कुछ एक्सचेंज करना है करते रहे, नो थर्ड पर्सन शुड कम टू डिस्टर्ब अस। और आज वही व्यक्ति का शरीर वहां पड़ा हुआ है और वो कहती है नहीं नहीं मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसके साथ आप रहो, हाँ इसके साथ आप रहो, खुद जाके दूसरे कमरे में लेट गई या जो भी अपना आंसू बहा रही है चाहे और कुछ करना है, हाँ पर डेड बॉडी के साथ में रात भर नहीं रही, क्यों? ही इज़ नॉट माई हस्बैंड मो मोर, वॉट इज ही, इज अ डेड बॉडी, ये डेड बॉडी है, अब इसके साथ में मैं नहीं रहूँगी, ये मेरा पति नहीं है। सो जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तभी तक लोग कुशल पूछते हैं, यावत पवनो निवसति देहे तावत कुशलम पृक्षति गेहे, घर में गए तो लोग पूछेंगे कैसे हो, थक गए क्या, चाय लो, ठंडा पियोगे, गर्म पियोगे, हाँ आज ऑफिस में कैसा रहा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। लेकिन जब घर से निकल गए, ये शरीर त्याग करके निकल गए, भार्या बिभ्यति तस्मिन काय, उसी शरीर से उसकी पत्नी उसी से डर करती है, अब नहीं इसके साथ रहना है। दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिटी। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हम रोज मिल करके रहते हैं, अगर वो डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाए तो कितने लोग रहना चाहेंगे उसके साथ अकेले में, अंधेरी रात में वो भी, हाँ बताइए कितने लोग रहना पसंद करेंगे, नॉट मेनी पीपल वुड लाइक टू बी देयर, है ना। अगर रहेंगे भी तो बोलेंगे दो चार दोस्त लोग साथ में मिलके रहते हैं, पता नहीं क्या हो। एक बार गौर गोपाल प्रभु एक स्टोरी बता रहे थे कि एक आदमी जो है बहुत सालों से वो हर्स ड्राइव करता था, वो डेड बॉडी होती है ना, शव वाहिनी, डेड बॉडी की गाड़ी, तो वो डेड बॉडी का गाड़ी चलाना छोड़ करके टैक्सी ड्राइविंग करने लगा। तो टैक्सी ड्राइविंग कर रहा था तो एक दिन उसके टैक्सी में एक आदमी आके बैठा और बोला मुझे अमुक जगह पे जाना है तो थोड़ा जल्दी चलो। तो वो इतने फास्ट टैक्सी ड्राइव कर रहा था तो उसने पीछे से उसको टैप किया, अरे ड्राइवर साहब थोड़ा धीरे चलो, इतना तेज क्यों जा रहे हो, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो जैसे ही उसने उसको पीछे से टैप किया, ड्राइवर अपना बैलेंस खो गया। तो इसको लगा रही मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, समहाउ अदर वो ड्राइवर कंट्रोल किया गाड़ी को, रुका, पूरा पसीने से तरबतर हो गया था। उन्होंने पूछा उसको कि क्या हुआ, मैंने तो तुमको जस्ट पूछ दिया थोड़ा धीरे चलाओ टैक्सी। तो बोलता है साहब आप जानते नहीं हैं, आज से पहले मैं हर्ष चलाता था और हर्ष में हमेशा क्या होता था, मुर्दे रहते थे, हाँ तो आज भी मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा कि मैं वो हर्ष ही चला रहा हूँ और पीछे से डेड बॉडी मुझे कह रही है रुको कहाँ जा रहे इतनी तेजी से, हाँ तो जैसे ही मुझे उसका ध्यान आया कि डेड बॉडी उठ करके मेरे को टैप कर रहा है क्या, इतना दिन से मुर्दा ढोया उसने फिर भी उसको लगा मुर्दा मतलब इसमें कुछ भूत भात होगा, समझ में आया ना, डर गया, पसीने से तर बतर हो गया, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया उसका। तो हमारी चेतना जो है, हम किसी के साथ में भी रहें लेकिन डेड बॉडी से हमेशा डरे, है ना। तो डेड बॉडी के साथ आज भी चाहे हमारे पिता का डेड बॉडी हो, माता का डेड बॉडी हो, पुत्र का डेड बॉडी हो, किसी का भी हो, अकेले रहना हमको उसके साथ डर लगता है, क्यों? क्योंकि हमको रियलिटी पता नहीं है। वही शरीर वही केमिकल पर अनुभव नहीं है, हिलना डुलना नहीं है, इच्छाएं नहीं है, चेतना नहीं है, सोचना नहीं है, क्यों? क्योंकि आत्मा जा चुकी है और ये हम सबके साथ होगा, हाँ। आत्मा को देखने के और भी प्रमाण हैं, कैसे जान सकते हैं आत्मा को बताइए, दूध में घी होता है कैसे जानते हैं, होता है ना, कैसे जानते, हाँ प्रोसेस है ना, तिल में तेल होता है प्रोसेस है, गन्ने में शक्कर होती है प्रोसेस है, लकड़ी में आग होती है उसको जानने का प्रोसेस है, उसी तरह से गुलाब में या फूल में इत्र होता है उसको जानने का एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, पुष्पे गंधम तिले तैलम इच्छा गूढ़म पैसे गृतम काष्ठे वहनी पश्यति आत्मा विवेकतः। आत्मा को भी हम अपने चर्म चक्षुओं से नहीं अपने बुद्धि से ज्ञान के चक्षु से देख सकते हैं, जान सकते हैं। आत्मा को देखने का और तरीका क्या है बताइए, आत्मा को देखने का तरीका जो है वो जानना चाहिए हमको, ये जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में अगर हम कोई कोशिका का निरीक्षण करना चाहते हैं या किसी सूक्ष्म जीवाणु का निरीक्षण करना चाहते हैं तो क्या करते, उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, है ना। अगर गणित में कुछ समझना चाहते हैं तो उसको हम क्या समझते हैं, कैसे गणित का अलग अंडरस्टैंडिंग है, उसका अपना अनेक अलग एनालिसिस है, मैथमेटिकल एनालिसिस बोलते हैं, उससे हम किसी चीज़ पे अराइव होते हैं। पर मान लो अगर आप मैथमेटिकल कोई सोल्यूशन को और सॉल्व करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करके किसी सोल्यूशन पे अराइव करना चाहते हो, तो क्या वो जो फार्मूला आपको या प्रॉब्लम दिया गया उसको माइक्रोस्कोप के नीचे डाल देंगे तो आपको एडजस्ट करने से मालूम पड़ जाएगा प्रॉब्लम का सोल्यूशन? हाँ, एंड विल यू लाइक टू डू दैट फर्स्ट थिंग? हाँ, कर पाएंगे क्या बताइए? सूक्ष्मदर्शी के नीचे प्लस माइनस या जो भी सारे अंक हैं उसको डाल करके और हम एडजस्ट करेंगे कितना भी, तो कैन वी गेट द सोल्यूशन? नहीं। या तो कोई सूक्ष्म वस्तु को देखना है, उसको हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उसको जान सकते हैं कि क्या है, ये बैक्टीरिया है कि अमीबा है कि क्या है, जान सकते हैं उसको? नहीं, मुश्किल है। पानी के अंदर कितना बैक्टीरिया है, क्वांटिटी क्या है, उसको हम सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं, ना कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पानी के एक ड्रॉप पानी में कितने बैक्टीरिया वो जान सकते हैं, है ना। उसी तरह से अगर आपका कोई रासायनिक प्रयोग करना है तो उसको क्या सूक्ष्मदर्शी में डाल देंगे तो आपका पीपीटी बाहर आ जाएगा? एक ब्यूरेट में एक चीज़ लेते, दूसरे ब्यूरेट में दूसरा केमिकल लेते हैं, दोनों को जब मिलाते तीसरे ब्यूरेट में तो कुछ थर्ड चीज प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन को मिलाते हैं दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मिलाते एक मॉलिक्यूल, तो एक बूंद वाटर बनता है, है ना। वन एटम ऑफ वाटर इज क्रिएटेड, है कि नहीं है। तो उसी तरह से क्या अगर हमको ये के वाटर बनाना है तो उसको हम सूक्ष्मदर्शी में डाल करके देख सकते हैं, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वाटर बना सकते हैं, या फिजिक्स का मशीन वगैरह कुछ फिट करके उसको जान सकते हैं? सो इवन जब भौतिक ज्ञान हम केवल इंस्ट्रूमेंटालिटी चेंज कर देते हैं तो दूसरे विषय का ज्ञान हम इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देने से, प्रोसीजर चेंज कर देने से नहीं जान सकते हैं, तो आत्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जो है हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कल के ड्रामा में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, बताया था ना कि हम आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का उसका अपना तौर तरीका है, उसका अपना फार्मूला है, उसका अपना प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है जैसे शास्त्र का अध्ययन करो, शास्त्र के अंदर नॉलेज दिया गया है, ध्यान करो, नाम का जप करो, उसमें दिया गया है नामे प्रस्फुटित तो है रूप गुण लीला, भगवान का नाम लेकर के, भगवान का नाम, कोई भी नाम नहीं, हाँ, भगवान का नाम जप करेंगे तब क्या होगा, हम भगवान के बारे में, उनके रूप, उनके गुण, उनके लीला, उनके तत्व के बारे में जान सकते हैं। तो अगर हम उनको जानना है तो मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भगवान को नहीं जान सकता हूँ, या भगवान का फोटो जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके मैं भगवान को नहीं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। भगवान के बारे में श्रवण करना पड़ेगा, तरीका उसका अलग है, फॉलो दैट प्रोसीजर। उसी तरह से आत्मा को जानने का भी विभिन्न तरीका है। दूसरा है अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान, मतलब इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूशन से हम कुछ चीज़ें जानते हैं। सो इंट्यूटिव नॉलेज कौन है? अगर मैं पूछूँ ये आपका नाक कहाँ पे है तो आप दिखाओगे मेरा नाक इधर है, है ना। मेरा नाक, मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा शर्ट, मेरा घर, मेरा कार, मेरे बच्चे, ये सारी चीज़ें हैं जिनको मैं मेरा क्लेम कर रहा हूँ, मेरा स्वामित्व तो जिसके ऊपर कर रहा हूँ, वो लो हर चीज़ जिसको मैंने कहा मेरा शर्ट, तो शर्ट और मैं अलग हूँ, है ना, शर्ट और मैं अलग हूँ। मेरा पेन, तो मैं और पेन अलग हूँ। मेरा घड़ी, तो घड़ी और मैं अलग हूँ। मेरा कंप्यूटर, कंप्यूटर और मैं अलग हूँ। मेरा घर, घर और मैं अलग हूँ। उसी तरह से जब मैं कहता हूँ मेरा नाक, तो मैं और नाक अलग हूँ, या क्या ये मैं यही कहता हूँ क्या मैं नाक हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं सिर दर्द कर रहा हूँ, क्या बोलता हूँ? जब आपका सर दर्द करता है तो आप क्या बोलते हैं? मेरा सिर दर्द कर रहा है, या मैं सिर दर्द कर रहा हूँ बोलते हैं, तो आप ग्रामेटिकली करेक्ट बोलते हैं, रॉन्ग बोलते हैं? कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि मैं अभी तक नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। अगर मैं जानता कि ये जिसको मैं मेरा कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग सदियों से यही बोलते आ रहे हैं। अगर बच्चे को बोलो बेटा तुम्हारा हाथ किधर है दिखाओ, तो बोला मेरा हाथ इधर है ना, आप मेरी उंगली इधर है, मेरा कान इधर है, मेरी आँख इधर है। तो मैं और जिसको मैं मेरा क्लेम कर रहा हूँ, वो दोनों अलग है, इसी तरह से ये नाक कान आँख मुँह सब हमारे शरीर के अंग हैं। मेरा शरीर कहते हैं हम लोग, मैं शरीर नहीं कहता हूँ। मैं शरीर छोड़ करके चला गया, मतलब शरीर और मैं अलग अलग हूँ इसलिए तो छोड़ के चला गया। अगर मैं ही शरीर होता तो मैं अगर कहीं जाता तो इसको कहाँ छोड़ के जाता है? यू टेल मी, है ना। मैं अपना कार पार्क करके चला गया होटल में, चला गया मंदिर में, चला गया टिकट निकालने के लिए, कार कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? उसी तरह से शरीर मेरा अगर होता तो मैं जहाँ भी जाता तो लेके जाता ना। शरीर अगर मैं हूँ तो मैं अगर कहीं भी जाता तो शरीर को साथ लेके जाता, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ इसलिए जब चाहूँ शरीर में यूज़ करता हूँ या जब चाहूँ उसको कहीं छोड़ करके कहीं और चला जाता हूँ। एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर भी प्राप्त कर लेता हूँ। एक कार में ट्रेवलिंग किया, अब इसको छोड़ के दूसरी जगह चला गया, है ना, है कि नहीं? हम उसी चीज़ को लेकर के नहीं जाते। तो दिस इज इंट्यूटिव नॉलेज दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। सेम चीज है ऑलमोस्ट। आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण क्या है, अब हम लोग वैज्ञानिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। मृत्यु का करीब से अनुभव, क्या मृत्यु के बाद जीवन है जानना चाहते? वार्निंग लिखा हुआ है। हाँ, आपको मृत्यु के बाद जीवन है उसको जानने के लिए मरना तो पड़ेगा ना। वह मरने के बाद में बताने के लिए आ सकते हैं क्या? हाँ, आते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान जिसको वो रिमेम्बरेंस देते हैं वो आके बताता है कि हाँ मैं था पहले और अब हूँ, पर जिसको भगवान वो स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो नहीं बोल पाता है। पर हम में से सब लोग आते हैं, जब तक हम इस जगत से मुक्त नहीं होते तब तक बार बार आते हैं। अब तक पता नहीं हमने कितने जन्म ले चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट पैदा हुआ जिस दिन से उसी दिन से मेरा स्टार्ट हुआ अस्तित्व और जिस दिन मैं मर जाऊंगा उसके बाद में नहीं है। मैं तब भी मैं हूँ, उसके पहले भी मैं था। किस रूप में था? एक भृगु संहिता है, भृगु ऋषि की लिखी हुई है ना, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के द्वारा आपको आपके 50 पूर्व जन्मों के बारे में खबर मिल सकती है। योर 50 पास्ट लाइफ्स व्हाट यू वेयर पर कैलकुलेशन आना चाहिए। वो भृगु ऋषि के पास था, उसको ज्योतिष शास्त्र है वो। हाँ, देखो, हाँ माता जी थोड़ा स्टडी भी कर रही हैं, सो पीपल कैन गो टू हर, शी विल बी एबल टू टेल, है ना। या तो हिप्नोटिक रिग्रेशन होता है, मालूम है, हिप्नोटाइज करके लोग उसको बैक में लेके जाते हैं और बैक में लेके उसको फिर पूरे उसके प्रीवियस लाइफ्स में लेके चले जाते हैं। दैट इज अनदर साइंस कॉल्ड हिप्नोटिक रिग्रेशन। सो मृत्यु के बाद जीवन है, चलो विचार करते हैं इसके ऊपर। सो मृत्यु का करीब से अनुभव, ये है डॉक्टर माइकल सेबॉम, एमरी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस यूएसए से। हाँ, ये एक बार अपने हॉस्पिटल में थे, ये इस एमरी स्कूल में, तो उस समय एक ऐसे पेशेंट को लाया गया जो पेशेंट किसी दूसरे शहर से उनके उस शहर में फर्स्ट टाइम विजिट करने के लिए आई थी, और वो जहाँ पर रुकी हुई थी वहाँ पर ही वो अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई, और उसको बेहोशी की हालत में किसी बीमारी के कारण उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लेके आए, और हॉस्पिटल में लाने के बाद में उसको उसी बेहोशी की हालत में उसके ऊपर शल्यक्रिया किया गया, एंड डॉक्टर सेबॉम परफॉर्म दैट ऑपरेशन। उसके बाद में फिर उसको वार्ड में ले जा करके छोड़ दिया गया, एंड 4-5 घंटे के बाद में डॉक्टर सेबॉम ने सोचा कि मेरा पेशेंट रिकवर हुआ कि नहीं, होश में आया कि नहीं, उसको मिलने के लिए आए। जब उसको मिलने के लिए आए तो वो डॉक्टर ने जाकर के उसके पास देखा तो वो होश में आ चुकी थी। डॉक्टर उससे बात करने लगे, बात करने के दौरान उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, मैं आपके हॉस्पिटल के पिछवाड़े में गई थी, वहाँ पर मैंने एक ओक का पेड़ देखा, ओक ट्री, एक ओक का पेड़ देखा, और वो ओक का पेड़ जो है आपके उसकी एक ब्रांच जो है आपके हॉस्पिटल के छत पे आई हुई है और उस पर बहुत अच्छी छाया है। तो डॉक्टर ने पूछा कि हाउ यू नो दैट, उसने कहा कि मैं अभी एक घंटे पहले वहाँ जाके आई हूँ, एक दो घंटे पहले, जो 2-4 घंटे पहले जो ऑपरेशन हुआ है, तो उसको ऑपरेशन के दौरान वो बोल रही कि मैं वहाँ जाके आई हूँ। तो डॉक्टर सोच में पड़ गया कि जिस समय ये बता रहे कि वहाँ जाके आई है उस समय तो ये बेहोशी की हालत में ऑपरेशन थिएटर में पड़ी थी, तो ये वहाँ कैसे जाके आई? डॉक्टर ने सोचा इसको शायद कुछ फोबिया हो गया रहेगा और उसके कारण वो इस तरह से कुछ बकबक कर रही है। फिर डॉक्टर ने उससे बात जारी करना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा कि हाउ यू नो दैट? कहा डॉक्टर मैं जानती हूँ, आप भी जा कर के देखो, अच्छा बढ़िया पेड़ है वो उधर। सो डॉक्टर ने कहा कि आप कैसे गए वहाँ ऊपर छत के ऊपर? तो उसने कहा कि मैं छत पे ये सीढ़ियों से गई ऊपर, और सीढ़ियों से जब मैं गई तो प्रमाण क्या है कि तुम सीढ़ियों से गई? कहा कि जब मैं सीढ़ियों से ऊपर पहुंची तो मेरे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एक नाइकी का जूता पड़ा हुआ था, नाइक कंपनी का, नाइकी लिखा रहता है ना जूते पे, वो फटा हुआ एक जूता पड़ा था, और उसके दूसरे साइड में एक जंग लगी हुई लोहे की पानी की टंकी है, और उस पौधे वो पेड़ जो है उसका ब्रांच जो है उस टंकी के ऊपर ऑलमोस्ट आकर के लगता है। सो आई बीन देयर। डॉक्टर को और सरप्राइज हुआ क्योंकि हॉस्पिटल में नॉर्मली क्या करते हैं, वो छत जो है वो हमेशा लॉक एंड की में रखते हैं, वो हमें खोलते नहीं है क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर फ्रस्ट्रेट हो गया तो ऊपर से जाके जंप मार सकता है, तो इसलिए उसको खोलते नहीं है। तो डॉक्टर सोचा कि ये जो बोल रही है इसको सोचना चाहिए कि ये क्या बोल रही है। उसने सिक्योरिटी को बुला करके पूछा, तो सिक्योरिटी को पूछा कि क्या ऊपर का दरवाज़ा खुला है क्या टेरेस का? सिक्योरिटी ने कहा कि नहीं अभी तक तो वो दरवाज़ा खुला नहीं, हो तो बहुत दिन से लॉक है और हॉस्पिटल का नियम ऐसे खोल के रखा नहीं जाता है उसको। तो फिर उसने कहा कि वो दरवाज़ा खोलो जा करके, और जब दरवाज़ा जा करके खोला तो देखा श्योर एंड इनफ कि जैसा उसने बताया था कि दो एक लेफ्ट साइड में वो नाइकी का शूज़ जो है वो फटा हुआ पड़ा है, तो देखा कि वहाँ पर जैसे सीढ़ी से ऊपर चढ़े लेफ्ट के बाइड में वो नाइकी का शू है, और राइट साइड में एक लोहे की टंकी है जो डायमेंशन उसने बताया था, और उसके ऊपर ओक के ही पेड़ का एक ब्रांच जो है आकर के लग रहा है। डॉक्टर ने देखा कि परफेक्ट बता रही है, तो डॉक्टर सोच में पड़ गया कि ये बेहोशी की हालत में थी और अभी मैं इसको यहाँ मिलने के लिए आया है। सारे हॉस्पिटल स्टाफ से पूछने के बाद में पता चल रहा है कि ये तो अभी भी उसी जगह पर पड़ी हुई है जहाँ पर इसको लाया गया। सी हैज़ कम फर्स्ट टाइम इन द सिटी, फर्स्ट टाइम विजिटेड द हॉस्पिटल, नेवर केम टू द हॉस्पिटल एनी टाइम बिफोर। फिर उसको कैसे मालूम है कि हॉस्पिटल के पिछवाड़े में एक ओक का पेड़ है? डॉक्टर के मन में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि इसको ये सारा चीज कैसे पता चला। तो डॉक्टर ने रिसर्च करना शुरू किया, एंड देन आफ्टर रिसर्चिंग ही कुड रियलाइज कि ये शरीर के अंदर कोई और रहता है। जब इस शरीर के ऊपर कुछ आघात पड़ता है, जब शरीर त्यागने का अनुभव होता है, स्थूल शरीर से अलग आकाश में तरंगित होते हुए शरीर के साथ घटने वाली घटनाओं को देखने का अनुभव होता है, इसमें आकाश के ऊपर की ओर किसी सुरंग या रास्ते से जाने का अनुभव होता है, सो जब व्यक्ति बहुत अधिक ट्रॉमा में होता है तो वो अपना शरीर त्याग करके छोड़ करके और शरीर से बाहर निकल जाता है, और फिर शरीर के साथ क्या हो रहा है वो देखता है और वो रिपोर्ट करता है। हमारे एक सन्यासी हैं सचिनंदन महाराज, उनके बारे में उस दिन बताया था आप लोगों को कि उनके पिता का एक अनुभव बताया था, उनका एक पहला उनका खुद का एक अनुभव है नियर डेथ एक्सपीरियंस का। उनका खुद का अनुभव क्या है कि उनको एक बार हॉस्पिटल में किसी ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे, तब वो सन्यासी नहीं थे, तो उस समय जब उनके ऊपर ऑपरेट कर रहे थे सो उनको एनेस्थीसिया दे करके बेहोश कर दिया गया था, और डॉक्टर आपस में बैठे, उस समय कुछ गोल्फ का मैच चल रहा था, तो गोल्फ के मैच के बारे में चर्चा कर रहे थे आपस में। जब इनको होश में आया, डॉक्टर इनसे मिलने के लिए आया, तो इन्होंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर व्हेन यू आर ऑपरेटिंग द पेशेंट इट इज़ नॉट वेरी गुड टू टॉक अबाउट एनी अदर थिंग्स देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पेशेंट। आप लोग मेरा ऑपरेशन कर रहे थे उस समय आप लोग गोल्फ के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो डॉक्टर को लगा कि इसको कैसे मालूम, ये तो बेहोश पड़ा हुआ था। हाउ डज ही नो दैट व्हाट वी वर टॉकिंग? ऐसे अनुभव बहुत सारे लोगों के साथ में होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, और जब शरीर के ऊपर कुछ ट्रॉमा या ऐसी कुछ कठिन स्थितियां आती हैं तो आत्मा ये शरीर को निकल करके बाहर जा करके शरीर को देखता है। आप लोग स्वप्न देखते होंगे, स्वप्न तो सबने देखा होगा, है ना? स्वप्न के समय में आपका शरीर तो खटिया पे सो रहा है ना, और आप पूरी दुनिया घूम के आते हैं, है ना। कौन जाता है दुनिया घूमने? हाँ, मन, मन तो शरीर है, हाँ आत्मा जाती है। आत्मा और उस शरीर का एक कनेक्शन रहता है, आपको मालूम है। जब शरीर से आदमी निकलता है बाहर तो उसका एक कनेक्शन रहता है, इसीलिए जब कोई बहुत गहरी नींद में सोया रहता है ना तो उसको झकझोर के उठाया नहीं जाता है। अगर झकझोर के उठाया तो हो सकता है कि कनेक्शन टूट जाए तो वो वापस लौट नहीं सकता है, इसीलिए उसको बड़े प्रेम से उठाते हैं, हरे कृष्णा उठो, हाँ है ना, उसको बुलाते हैं, उसको टच करते हैं, तब धीरे धीरे वो वापस आ जाता है। आपने सुना होगा कि ये साउथ की तरफ सिर करके सोते क्यों नहीं है, कौन बताएगा मुझे? नरक का द्वार है वो, साउथ में नरक का द्वार है, साउथ का गेट। ये सब स्पेकुलेशन है, ये सब स्पेकुलेशन है। क्या होता है, आत्मा जो है वो नॉर्थ साउथ पोजीशन में रहती है, समझ में आया ना। उसका जो सिर है वो साउथ की तरफ रहता है और पैर जो है मोस्टली आत्मा का। तो नॉर्थ साउथ में अगर जब व्यक्ति सोता है तो आत्मा उल्टा घुसती है उसके शरीर में, मतलब उसका मुंडी जो है वो पैर की तरफ घुसेगा और पैर जो है वो मुंडी की तरफ घुसेगा, समझ में आया ना। तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इट टेक्स लिटिल टाइम टू कम टू बैलेंस, समझ में आया ना। तो इसीलिए चूंकि वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रहता है इसीलिए उस तरीके से नहीं सोना चाहिए। जब हम प्रॉपर सोएंगे तो आत्मा उसी पोजीशन में शरीर में जाएगी, मुंडी का पोर्शन मुंडी में जाएगा, सिर का पोर्शन ये क्या कहते हैं पैर का पोर्शन पैर में जाएगा। तो व्यक्ति जब जागृत होता है तो ही विल बी इन ए फुल अलर्ट एंड कॉन्शियस सिचुएशन, अन्यथा उसको उठने में कभी कभी देखो, इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ मुंडी करके मत सोना। और अनदर से कारण है कि साउथ की तरफ मुंडी किसका रहता है, जिसका डेड बॉडी होता है। तो मोस्टली जो पापी लोग होते हैं वो लोग जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो साउथ की तरफ से ही जाते हैं, क्योंकि नरक का द्वार जो है वो यमराज के यहाँ जाने का मार्ग जो है वो साउथ की तरफ से है पापी लोगों के लिए। देयर आर फोर गेट्स एंड फोर डायरेक्शंस, लेकिन जितने पापी लोग होते हैं तो प्लैनेट अर्थ पे जो लोग कर्म करते हैं और स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं उसमें 99.99% पापी लोग होते हैं। इसीलिए नॉर्मल ट्रेंड बन गया है कि जब कोई मरेगा तो उसको साउथ की तरफ, समझ में आया ना, ये नॉर्मल ट्रेंड बन गया है। अगर आप जाना उधर अवॉइड करना चाहते हैं तो अभी से विचार करो और भगवान के चरण कमल का आश्रय ले लो, नहीं तो जाना ही पड़ेगा। और वो मार्ग बहुत कठिन है, गरुण पुराण या भागवतम 5th कैंटो उठा करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि वो मार्ग कितना कठिन है। अभी हम उस मार्ग पर चर्चा नहीं करेंगे पर वो मार्ग बहुत कठिन है और मैं यही कहूँगा कि उधर से जाने के लिए अवॉइड करो। लेकिन अभी इस समय चूँकि हम कर्म कर रहे हैं हमारे कंट्रोल में है, हम डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं, पर एक बार जैसे बाण निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कर्म का अवसर चूक गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बी अलर्ट। स्थूल जब मृत्यु का करीब से जब अनुभव होता है तो शरीर त्याग देने का अनुभव होता है कि हम ये शरीर छोड़ करके बाहर निकल गए हैं। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग जो है शरीर त्याग करके और उसके डेड बॉडी का जब प्रोसेशन लेके जाते हैं तो वो भी व्यक्ति जो है पीछे पीछे चलता है, देखता है कि मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं, मालूम है। और कभी कभी कुछ लोग जो है डेड बॉडी को केयर नहीं करते हैं तो क्या होता है, उस डेड बॉडी में जो आकाश में जो सूक्ष्म आत्माएँ सूक्ष्म शरीर में भटक रही हैं घोस्टली बींग्स, वो आकर के उस शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि अरे वही आदमी वापस जिंदा हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे हमारे ऑफिस में एक मिश्रा जी थे, वो मिश्रा जी मुझे बता रहे थे कि उनके गांव में एक ऐसी घटना घटी थी। उसके बच्चे जो थे वो बड़े मॉडर्न बुद्धिमान लोग थे, मॉडर्नाइज लोग थे, तो वो जब मर गए तो उनको एक रूम में बंद करके ऐसे ही छोड़ दिए, क्योंकि रात के अंधेरे में मरे थे तो सुबह ले जाके क्रिमेट करेंगे, ऐसे रूम में छोड़ दिया। और उसके बाद में जब उसको लाश लेकर के गए जलाने के लिए तो जब उसको चिता पे रख दिए अग्नि लगाए तो वो उठ बैठा। सो लोगों ने सोचा कि शायद लॉन्ग कोमा में रहे होंगे, वापस उठ बैठे, उसको घर लेके आए, लेकिन उसके पूरे आचरण बदल चुके हैं, पहले अच्छा व्यक्ति था, अभी एकदम बदमाश हो गया, नशा करने लगा, दारू पीने लगा। लोगों ने सोचा कि शायद इसके दिमाग पे कुछ असर हुआ होगा ये बीमारी के इम्पैक्ट के कारण। पर उसके घर में बहुत सारा नुकसान होने लगा। एक साल तक वो उसके घर में, उसका घर का सारा संपत्ति नष्ट हो गया, बहुत गरीब हो गया वो लोग। तब कुछ लोगों ने उनको आकर के बोला, अरे तुम्हारे पिताजी को दिखाओ, शायद कोई घोस्ट वोस्ट उसको हंटिंग करके रखा है, इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हारे घर में सब नष्ट होता जा रहा है। तो उन्होंने एक घोस्ट बस्टर को बुलाया, एग्जॉर्सिस्ट को, और जब उसको बुलाया तो उसने उसको पूछा कि तुम कौन है भाई। उसने उसको बुलाया और उसको पूछा कि तुम कौन है। तो वो बोला, मैं अमुक अमुक हूँ। तो वो बोला कि अरे तुम्हारा पिता तो नहीं है, कोई और है। तो बोला, इसको क्यों पकड़ के रखा है। बोला, इसको किसको पकड़ के रखा है, ये आदमी जो इस शरीर में रहता था वो तो एक साल पहले जा चुका है, ये शरीर खाली था, मैं घुस गया इसमें, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, मैं इसमें रह रहा हूँ। तो एक साल दैट घोस्ट यूज दैट बॉडी। इसीलिए देखो, कभी भी आदमी मरता है तो तुरंत उसके सामने अग्नि जलाते हैं, लोहा रखते हैं, है ना, ऐसा सब कुछ करते हैं। लोग वहाँ पे एकत्र हो जाते हैं जिससे कि घोस्ट उसको अटैक ना करे। और सबसे पहला काम करते हैं कि घोस्ट को दूर रखने के लिए पिंडदान करते हैं। 5 पिंड जो है उसको 5 डायरेक्शन में भेज देते हैं, जिससे कि घोस्ट वो पिंड खा करके चला जाए, उस बॉडी को न छुए। हमारा पहले प्रोसीजर था, जब लोग शरीर बॉडी लेके चलते थे तो जहाँ भी बॉडी को रखा वहाँ पे पंडित उसको दान, ये पिंडदान करता था। 5 जगह पे उसको उतारते हैं, 5 जगह पिंडदान करते हैं, शमशान घाट में ले जाने के बाद में पिंडदान करने के बाद में ही उसको छोड़ते हैं, मतलब अग्नि में डालते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक ये जो घोस्टली बींग लोग रहते हैं, कुछ लोग उसको खाने के लिए, और अगर वो चलाइबल है तो उसमें घुस करके उसको इस्तेमाल करने के लिए हमेशा अटैक करते रहते हैं। आज भी हम लोग वो करते हैं पर उसके साइंस को नहीं जानते। और आजकल तो कोई कुछ ठीक से करता भी नहीं है, पिंडदान विंडदान तो लोग भूल चुके हैं। सो ये सारे कारण हैं। सो शरीर से आत्मा निकल जाती है और आत्मा देखती रहती है कि मेरा शरीर के साथ क्या हो रहा है। मृत्यु का करीब से अनुभव अपने आप पर एक प्रकाश पुंज के रूप में होने का अनुभव होता है। जैसे जब कोई बाहर निकल जाता है तो वो सोचने लगता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं एक अलग चीज़ हूँ और कहीं और दूर गति से जा रहा हूँ। पर अंततः झिझकते हुए उसको स्थूल शरीर में वापस से लौट आने का भी अनुभव होता है। तो ये है नियर डेथ एक्सपीरियंस। अनदर साइंटिफिक थिंग वी विल टेक, विल टॉक अबाउट दिस पूर्व जन्म की यादें। दिस इज डॉक्टर सतवंत पसरीचा एंड सी वॉज द स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर इयान स्टीवेंशन। डॉक्टर इयान स्टीवेंशन के साथ में भी ऐसा ही कुछ घटना घटा, इसलिए उन्होंने ये एक पास्ट लाइफ के बारे में रिसर्च करना आरंभ किया इन्होंने। ही इज अ प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री वेस्ट वर्जीनिया USA में, एंड ही हैज एक्चुअली ब्रॉट ए थीसिस इन जिसमें उन्होंने 2000 री इनकारनेशन के केसेस को प्रूव किया है। मेरे पास में वीडियो है दिखाने के लिए, लेकिन समय शायद नहीं हो पाएगा इसलिए नहीं दिखाऊंगा। आप में से किसी को देखना होगा तो बाद में आप ले सकते हैं री इनकारनेशन केसेस के वीडियोज़ कैसे कैसे हैं। डॉक्टर सतवंत पसरीचा अभी यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बैंगलोर में, आप आज भी जा करके इनको मिल सकते हैं। हमारे कुछ ब्रह्मचारी लोग जाके उनको पर्सनली वहाँ पे मिल करके आए। सी इज देयर इन बैंगलोर, सी इज ए क्या कहते हैं उसको, पंजाबी लेडी है, एंड सी हैज़ डन हिज हर PhD अंडर दिस डॉक्टर इयान स्टीवेंशन। और ये दोनों ने मिल करके बहुत सारे केसेस को रिसर्च किए हैं। एंड सी ऑल्सो एक्चुअली NIMHANS करके, वो जो बैंगलोर का इंस्टीट्यूट है, इट्स फेमस एज NIMHANS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। सो सी स्टिल देयर, एंड ये लोगों ने मिल करके केसेस को डिस्कस किए हैं। इन लोगों ने बहुत सारे केसेस की छानबीन की है। इनको केस छानबीन करने का इन लोगों ने कुछ ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बना रखे हैं, चेक पॉइंट्स, कि कोई उनको चीट ना कर ले। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने रिपोर्ट करते रहते हैं, जैसे अचानक क्या होता है कि किसी के घर में बच्चा पैदा होता है। महाराष्ट्रियन के घर में बच्चा पैदा हुआ लेकिन वो मलयालम बोलने लगता है कभी, कभी किसी ने उसको मलयालम नहीं सुना है लेकिन वो मलयालम बोलने लगता है या बंगाली बोलने लगता है, और ये कहने लगता है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मेरा घर वहाँ है, मुझे वहाँ लेके चलो। ऐसे केसेस तो बहुत सारे मैगजीन्स में, पेपर्स में आते रहते हैं। जब गौर गोपाल प्रभु यही बता रहे थे यहाँ पे दादर में कॉलेज में प्रेजेंट कर रहे थे कुछ स्टूडेंट्स को, हाँ, तो उसमें से एक स्टूडेंट था वो खड़ा हो गया ये सुनने के बाद में, और उसने कहा कि सर आप जो बता रहे हैं डॉक्टर यान स्टीवेंसन एंड डॉक्टर सतवंत पसरीचा, तो उनके थीसिस में मैं भी एक केस हूँ, और उसका नाम था मिस्टर दीप कपाड़िया। दीप कपाड़िया की बात मैंने पहले भी यहाँ बताई है, ऑफकोर्स आप में से कुछ लोग नए हैं, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। दीप कपाड़िया इन हिज 80s 80 के दशक में बोरीवली में जन्म लिया, और जब बोरीवली में जन्म लिया तो जैसे ही बोलना आरंभ किया अपने माता पिता से बोलने लगा कि मेरा घर उदयपुर में है और मुझे उदयपुर लेकर के चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे उदयपुर जाना है। तो माँ बाप जो है उसकी ये बात से परेशान होने लगे, बार बार वो कहने लगा, गुजराती के घर में जन्म लिया और पूर्व जन्म में मारवाड़ी था राजस्थान का, उदयपुर का रहने वाला। तो उन लोगों ने जब बहुत बार बार ये इस तरह से बातें करने लगा तो उसके पिता को किसी ने बता दिया था, तो उसके पिता ने ये केस जो है डॉक्टर सतवंत पसरीचा को और डॉक्टर यान स्टीवेंसन को रिफ़र किया कि आप लोग आकर के ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। तो वो लोग जब आए और जा कर के इसके केस की छानबीन करने लगे तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि हम इस बच्चे को लेकर के उदयपुर चलते हैं, लेकिन इस बच्चे को नहीं बताना कि हम किस दिन उदयपुर जा रहे हैं। तो उस बच्चे को लेके वो लोग उदयपुर की तरफ चल गए, और जिस गाड़ी में बैठ के गए तो बोलने लगा कि हम लोग उदयपुर जा रहे हैं। जब गाड़ी में बैठा ही तभी बोलने लगा हम उदयपुर जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी पहचान गया वो। उसके बाद में जब उदयपुर पहुँचने से उसका एक पहला स्टेशन था, तभी बोला अभी उदयपुर नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है, सब लोग तैयार हो जाओ। तो अभी गाड़ी में कौन से साइड से उतरना है, ईस्ट से वेस्ट से? तो बोला नहीं, इस दरवाजे पे रहो, इस साइड में स्टेशन का प्लेटफॉर्म आएगा। यहाँ तक सब बताया, और उसके बाद में जब वो उदयपुर में उतरे तो उसके माँ बाप को सबको बोल दिया गया था कि बताना नहीं ये बच्चा कौन से साइड में जाएगा। सीढ़ी पे चढ़ने के बाद में बोलता है कि हम लोग वेस्ट में जाएंगे, और वेस्ट में जा करके सड़क पे वहाँ से एक तांगे वाला आ रहा था, उसको तांगे वाले को देख करके वो बच्चा कहता है अरे रामो रुको रुको हमको भी साथ में लेके चलो। तो टांगे वाला सोचता है अरे ये छोटा सा बच्चा दो बरस का ढाई बरस का ये मेरे को बुला रहा है नाम लेकर के, ये कौन है? तो बोला रामू तुम मुझे पहचाना नहीं? वो अपना पूर्व जन्म का आइडेंटिफिकेशन दिया उसको। तो बोला हाँ वो तो था लेकिन वो मर गया, फिर तुम कौन है, तुम कैसे जानते हो उसको और मुझको? तो बोला उसको नहीं वही मैं हूँ, हाँ हमको बिठाओ और लेके चलो हमारे घर। तो फिर उसको बिठाया और उसके साथ में उसको लेकर के गया। जब वो वहाँ गया घर पे, तो घर में जाने के बाद में वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्यों? क्योंकि जब वो जिंदा था तो उसके घर का दरवाज़ा किसी और साइड में था, वो उस साइड में गया लेकर के लोगों को, लेकिन उसके घर वालों ने वो दरवाज़ा बंद करके दूसरे साइड में दरवाज़ा खोल दिया था, तो इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो फिर उसका बेटा आया अपने एक छोटे बच्चे को लेकर के, उसके बच्चे को बेटे को देख करके उसने पहचान लिया कि ये मेरा बड़ा बेटा है। और उसके बाद में अभी वो बड़ा बेटा उसका अपने पिता को गोद में उठा के खड़ा है, उसका भी फोटो है, हाँ। और बाद में फिर उसके बेटे को लगा कि शायद ये लोग सब लोग मिल करके मेरे पिता का कुछ हड़प संपत्ति वगैरह जो है उसके ऊपर कुछ अधिकार वगैरह जमाने के चक्कर में ये बच्चे को मेरा पिता बता करके ये लोग आए हैं। तो उसने सोचा कि मैं इसके बच्चे की परीक्षा लूँगा कि ये सचमुच मेरा पिता है या नहीं है। तो उसने कहा कि देखो हमारे घर में एक बंदूक थी, वो केवल मैं जानता था और मेरे पिताजी जानते थे कि वो बंदूक कहाँ रखी है, दूसरा कोई नहीं जानता है। अगर तुम मेरे पिताजी हो तो बताओ कि वो बंदूक कहाँ रखी है। वो गया घर में, एक दीवाल थी, वो दीवाल में जाकर के एक जगह पे पुश मारा और श्योर इनफ वो दीवाल जैसा जो दिख रहा था वो खुल गया। अंदर एक दूसरा कबोर्ड था, उस कबोर्ड को खोल करके उसमें से बंदूक निकाल करके दिखाया। तब उस बच्चे को भी उसके बेटे को भी विश्वास हो गया कि हाँ ये मेरा पिताजी है, क्योंकि दूसरा किसी को ये मालूम नहीं है। उसके बाद में वो उन लोगों को लेकर के उदयपुर फोर्ट में गया, क्योंकि वो उदयपुर फोर्ट में ही नौकरी करता था। उदयपुर का उस फोर्ट में जो उस समय राजा था, ही वॉज 44th जनरेशन ऑफ महाराणा प्रताप, तो उसके साथ में वो नौकरी करता था एज ए सिक्योरिटी टू हिस दिस थिंग बॉडी गार्ड या सिक्योरिटी के रूप में। और इस तरह से पंखा निकाला, पहले अभी तो पंखा बिजली से चलता है ना, आपको पता होगा पता नहीं, पहले केरोसिन से चलने वाला पंखा था, यू नो एनीबडी न्यू? उसको उदयपुर म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है, उदयपुर का जो फोर्ट का म्यूजियम है उसमें आज भी रखा गया है। और उसमें बताते हैं कि ये दीप कपाड़िया ने ये निकाल करके दिखाया था, तो उसके नाम से वो निकाल करके वहाँ आज भी रखा गया है। और वो इस तरह से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया। फिर उसको पूछा गया कि तुमको मारा किसने, उसने कहा कि जिसने मुझे मारा वो मेरा मित्र था और वो एक तांत्रिक था, वो मुझे तंत्र विद्या करके मार सकता था, लेकिन उसने मुझे तंत्र से ना मार करके उसने मुझे किससे मारा, दूध के अंदर जहर दे करके मारा था। वो जाकर के कोर्ट में भी उसके लिए गवाही दिया, लेकिन चूंकि कोर्ट जो है पुनर्जन्म की बात को विटनेस नहीं मानता है, या उसको क्या कहते हैं प्रूफ नहीं मानता है, इसके लिए उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन उसने जो जो बताया सब कुछ परफेक्ट था। और ये उस समय न्यूज़पेपर में काफ़ी धड़ल्ले के साथ आ रहा था। कुछ लोगों ने, उसने खुद दीप कपाड़िया ने वो न्यूज़ कटिंग्स भी रखे हुए हैं। और वो दीप कपाड़िया अभी यहाँ बोरीवली से शिफ्ट होकर के ऐरवली में रहता है। मेरे पास में उसका फ़ोन नंबर है, आप में से कोई चाहते तो उसको डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। मैंने 3-4 बार प्रोग्राम किया तो उसको बुलाया भी था, वो आया भी, पर मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया, हो सकता है वो बिज़ी होगा। आ करके ऑडियंस ने उससे जो प्रश्न पूछा, ऑडियंस को भी उसने प्रश्नों के उत्तर दिए। ऑडियंस में से कुछ लोगों ने उसको पूछा कि जब आप शरीर त्याग करके निकले तो आप कहाँ जा रहे थे, आपके साथ कौन कौन थे? तो बोला, मुझे ये याद नहीं है कि मेरे साथ कौन कौन थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम हल्का हूँ और आकाश में बड़ी तेज गति से मैं उड़ता हुआ जा रहा हूँ। उसको ये याद नहीं है कि वो कहाँ पहुँचा और उसको दोबारा यहाँ कैसे आया। उसको सिर्फ इतना याद है कि मैं पहले उदयपुर फोर्ट में ये अमुक व्यक्ति के रूप में था और इस व्यक्ति ने मुझे जहर दे करके मार डाला है। उस व्यक्ति को आज भी कोई दूध या दूध का कोई भी प्रोडक्ट अगर खाने पीने के लिए देता भी है तो कहता है कि मैं खाता नहीं हूँ, अगर मैं खाता हूँ तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। ऐरोली में जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था तो वो अपनी पत्नी को लेकर के भी आया था और उसकी पत्नी ने भी इसको वाउच किया कि ये दूध से बना हुआ कोई भी चीज़ जो है कभी नहीं लेता है, अगर लिया झूठ से भी तो बीमार पड़ जाता है। और वो ये भी कहने लगा कि चूंकि अभी मेरी उम्र बढ़ रही है तो वो मेरी मेमोरी जो है वो अभी थोड़ी शेड होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो व्हाट डज दिस शोस, ये बताता है कि व्यक्ति का शरीर और व्यक्ति अलग अलग है ना। ये तो एक दीप कपाड़िया का केस है। आप चाहे तो दीप कपाड़िया से मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उस जमाने का उसका जो न्यूज़पेपर कटिंग्स है वो देख सकते हैं, एंड डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के थीसिस में उसका केस है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसे डॉक्टर इयान स्टीवेंसन एंड सतवंत पसरीचा ने अब तक, ये बहुत पहले का डेटा है तो इसमें 2000 बताया गया, पर उनका रिसर्च कंटिन्यू होगा तो रिसर्च और भी बढ़ चुका होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बार बार जन्म लिए हैं। यहाँ पे जेट ब्रिज है ना माटुंगा में, जेट ब्रिज के नीचे एक रेलवे का कारखाना है, वर्कशॉप है ना, वहाँ पे एक व्यक्ति को किसी ने वो जेट ब्रिज में मार डाला था और वो यहाँ से लखनऊ में जन्म लिया। लखनऊ में जन्म लिया तो यस बताइए। अच्छा आप बताइए, आपको मालूम है ये केस? सबको बताइए। जैसे दिस इज अनदर इशू, ऐसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास में कुछ ना कुछ केसेस होंगे। सो दिस शोज दैट आत्मा और शरीर अलग अलग है। शरीर मरता है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ये देखिए, ये सब केसेस के फोटोस है। एक छोटी बच्ची है, हाँ, ये जो बच्ची है ये अपने पूर्व जन्म की माँ को और अपने इस जन्म की माँ को, दोनों को पहचान रहा है। ये लड़का जो है, एक बार रोड पे घूमते हुए जा रहा था, अचानक एक लेडी को देख करके चिल्लाया, अरे वो देखो मेरी पत्नी जा रही है। उसको अपनी पूर्व जन्म की पत्नी दिखाई दिया उसको। ऐसे ही ये लेडी जो है, इसके एक जन्म की माँ है, दूसरे जन्म की माँ है। हाँ, वहाँ पर एक बंगाल में एक मंजू करके एक स्टोरी था, वो भी न्यूज़पेपर में 70s में काफ़ी प्रचलित हुआ था। ये मंजू जो है वो भी बंगाल में एक घर में जन्म लिया था और वो बोल रही थी कि मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं कहीं और की रहने वाली हूँ। इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं। ये सारे केसेस डॉक्टर यान स्टीवेंसन और इन्होंने रिसर्च किए हुए हैं। अब तीसरा जो है, हम लोग शास्त्र के प्रमाण पर जानने की कोशिश करेंगे कि आत्मा और शरीर अलग अलग होता है या नहीं। भगवद गीता में भगवान दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देखिए, इस फोटो में दिखाया गया है, बच्चा पहले माँ के गर्भ में है, जन्म लेता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, हर शरीर बदलता जा रहा है, हर शरीर बदलता जा रहा है। जब माँ के गर्भ से जन्म लिया तो क्या वो बूढ़ा था, जवान था, क्या था? बच्चा था, पर अब बच्चा नहीं है। ऐसे हम लोग भी रहे होंगे, ऐसे है ना, एक दिन ऐसा रहा होगा जब हम माँ के गर्भ में रहे होंगे। आज हम गर्भ में घुस सकते हैं, रह सकते हैं, नहीं, लेकिन हम जिस शरीर में, कुछ 10 साल के बच्चे के शरीर में रहे होंगे, 5 साल के बच्चे के शरीर में रहे होंगे, 20 साल के व्यक्ति के शरीर में रहे होंगे, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, 80 साल के शरीर में आ गए, और वो शरीर धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर दोबारा शरीर धारण करते हैं। तो ये शरीर लेने का चक्र जो है चलता रहता है। भगवान कहते हैं उसी तरह से एक शरीर छोड़ करके आत्मा जो है दूसरे शरीर में चली जाती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है आत्मा के इस प्रयास से या प्रवास से चिंतित नहीं होता है। आत्मा के बारे में श्री चैतन्य चरितामृत में, भगवद्गीता में और भी बहुत सारे ग्रंथों में बहुत ज़्यादा प्रमाण दिया गया है। सनातन गोस्वामी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी सनातन शिक्षा दे रहे हैं दशाश्वमेध घाट वाराणसी पे। वहाँ पे उनको ये बता रहे हैं कि इस जगत में कितने प्रकार के जीव होते हैं, जीव कैसे इस जगत में आता है, सुनिए इसमें। स्वांस विभिन्न अंश रूप हैया विस्तार अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे करे न बिहार। भगवान अपने इसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से वो इस जगत में अनेक ब्रह्मांडों के रूप में अपने आप का प्रकाट्य करके, एको बहुसाम यो विदधाति कामान, भगवान जो है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अनेक रूपों में अपने आप को विभक्त करते हैं। सो अनंत वैकुंठ में भगवान विहार करते हैं। स्व अंश विस्तार चतुर्व्यूह अवतारगण, जब भगवान का स्व अंश या स्वयं प्रकाश, लीला प्रकाश, वैभव प्रकाश, ऐसे अनेक प्रकाश हैं भगवान के, अवतारों की श्रेणियाँ हैं। सो उस अवतारों की श्रेणियाँ में भगवान पहले चतुर्व्यूह के रूप में, यानी शंकर, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकरषण, और उसके बाद में द्वितीय चतुर्व्यूह, उसको भी वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकरषण कहा जाता है। सो इस तरह से भगवान अनेक अवतार लेते हैं और विभिन्न अंश, और उनका जो विभिन्न अंश होते हैं उनको शक्ति कहा जाता है, यानी कि आत्मा कहा जाता है। भगवान एक इंटीग्रेटेड लेवल पे अपने आप को एक्सपेंड करते हैं और एक फ्रेगमेंटेड लेवल पे अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। तो जो फ्रेगमेंटेड लेवल पे एक्सपेंड करते हैं वो जीव लोग हैं, जीवात्मा कहते हैं उसको। सो से विभिन्नांश द्वित प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य मुक्त, एक नित्य संसार। एक भगवान का एक आत्मा जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा नित्य मुक्त रहता है, हमेशा कंडीशन्ड नहीं रहता है। लेकिन दूसरा टाइप का जो आत्मा है वो कंडीशन्ड सोल होता है। तो उनमें से क्या डिफरेंस है, नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख, जो नित्य मुक्त होता है वो हमेशा भगवान का भक्त होता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। लेकिन जो नित्य और भगवान का परिषद के नाम से भगवान की सेवा करता है और भगवान की सेवा में ही उसको सब कुछ सुख प्राप्त होता है। लेकिन जो नित्य बद्ध कृष्ण है ते नित्य बहिर्मुख नित्य संसारे भुंजे नरक आदि दुख। लेकिन जो भगवान से विमुख होता है वो नित्य बद्ध कंडीशन सोल कहलाता है, वो इस भौतिक जगत में आकर के भटकता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। सही दो से माया पिसाची दंड करे तारे आध्यात्मिक आदि तापत्रय तारे जारी मारे। और माया क्या करती है, देखती है कि जीव भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो उसको पकड़ करके और उसको त्रिताप से सताती है। त्रिताप माने दुर्गा के हाथ में आपने त्रिशूल देखा होगा, हम लोग कल डिस्कस करेंगे उसके बाद में। ये त्रिशूल है, शूल माने कांटा, हाँ। उससे क्या करती है वो, किसको मारती है, राक्षसों को। राक्षस किसको कहा जाता है, राक्षस वो होते हैं जो भगवान को समर्पित नहीं होते, खुद भोग करना चाहते हैं, उनको राक्षस कहा जाता है। तो काम क्रोधेर दास ही या तार लाथी खाए, तो जो व्यक्ति काम क्रोध का लोभी होता है वो माया का डंडा खाता है। और बाद में अगर भ्रमण करते करते बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जब भगवान की शरण में आता है तो साधु वैद्य, उसको साधु एक डॉक्टर के रूप में साधु मिलता है और वो उसको असलियत बताता है। उसके असलियत से तार उपदे से मंत्र पिसाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तो वे कृष्ण निकट आए, तब जाकर के वो अपने जीवन को परफेक्ट कर पाता है। तो ये आत्मा का शॉर्ट में साइंस बताया उन्होंने उनको, हमको इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है बचपन से लेकर के जवानी और बुढ़ापा, कि हमारा शरीर भी जो है दिन रात बदलता जा रहा है, एवरी डे वी आर चेंजिंग, शरीर बदलता है व्यक्ति वही रहता है। कुछ दार्शनिकों के विचार, ये सोक्रेटस है, सोक्रेटस क्या कहते हैं, यदि मुझे पकड़ सकते हैं तो पकड़ लो। आप जानते हैं सोक्रेटस को जहर दे दिया था जार्स लोगों ने, ही वॉन्टेड टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ गॉड, तो उन लोगों ने उसको पकड़ करके मार डाला, बट ही सेड दैट यू कैनॉट किल मी बिकॉज यू डोंट नो दैट हु एम आई, मैं कौन हूँ तुम जानते नहीं हो, जब मुझे जानते ही नहीं हो तो मुझे पकड़ कैसे सकते हो और मुझे मार कैसे सकते हो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, मेरे शरीर का नष्ट कर सकते हो, पर मैं तो ये शरीर नहीं हूँ। उसी तरह से हम लोग भी शरीर नहीं है, एंड नोबडी कैन डिस्ट्रॉय अस। कार्ल जंग कहते हैं, मुझे विश्वास है मानव का कुछ अंश जिसे आत्मा कहते हैं वह इस भौतिक जगत देश काल और प्रभाव से परे है। आत्मा का ज्ञान क्या है, आत्मा अदृश्य है, अचिंत्य है, अपरिवर्तनीय है, अविनाशी है, सर्वगत है, सनातन है। और भगवद गीता में कहते हैं, अछेद्यो यम मदाह्यो यम अक्लोदय अशोष एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो यम सनातन अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये शरीर को जो टिप से लेकर के टो तक प्रकाशित किया हुआ है, जिससे कॉन्सियस है शरीर, वो क्या कहते हैं उसको, अविनाशी आत्मा है। विनाशम अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि, इसका विनाश करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। एक बार हमारे गुरु महाराज लेक्चर दे रहे थे और बोल रहे थे कि चाहे हाइड्रोजन बम एटम बम से भी बड़ा होता है ना, हाइड्रोजन बम भी अगर आपके शरीर पे गिर जाए आपको ग्राउंड जीरो लेवल तक एकदम चपटा कर दे, वो आपके शरीर का चटनी बना डाले, टुकड़े टुकड़े विभक्त कर डाले, बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय यू बिकॉज यू आर नॉट दिस बॉडी, है ना। कोई भी जगत का कुछ आपका विनाश नहीं कर सकता है आत्मा का, जो इस संपूर्ण शरीर में व्याप्त है यह आत्मा अविनाशी है, इस अविनाशी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। आत्मा कभी आपने देखा होगा कुछ लोग जुड़े हुए पैदा होते हैं, जोड़ के ही पैदा होते हैं, उनका शरीर में कुछ अंग जो है मिले रहते हैं, लेकिन उनके दो शरीर होते हैं और दोनों शरीर में दो अलग अलग आत्माएँ होती हैं। ये चेहरे पर देखिए, एक के चेहरे पर अलग भाव है, एक के चेहरे पर अलग भाव है, क्यों, एवरी वन इज इंडिविजुअल, है ना, एवरी वन इज इंडिविजुअल। तो शरीर देखा जाए तो जुड़ा होने के कारण एक ही शरीर है, ऐसे आप अगर ढूंढेंगे नेट पे तो बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे, हाँ, जिनको और बाद में डॉक्टर लोग ऑपरेट करके कुछ लोगों को अलग करते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, पर कुछ लोगों को अलग नहीं किया जा सकता, तो जिंदा रखने के लिए दोनों साथ साथ ही रहते हैं, पर स्टिल दे आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, दे आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज। भगवान की ये दो प्रकार की शक्ति है, एक शक्ति जो है उसको पराशक्ति कहते हैं और एक शक्ति जो है अपराशक्ति। अपराशक्ति से शरीर बनता है और पराशक्ति जो है वो आत्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट है। पराशक्ति जो है वो सच्चित आनंद है और अपराशक्ति जो है ये आठ मूल तत्व है, भूमि रपो अनल वायु खम मना बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो भगवान कहते हैं कि ये जो पराशक्ति है वो अपराशक्ति का दोहन करती है, मतलब आत्मा जो है ये पराशक्ति को लेकर, अपराशक्ति को लेकर के उससे अपने लिए अनेक प्रकार के अपनी इच्छा के अनुसार शरीर बनाता है। एक वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह से आदमी जो है, एक आदमी अनेक प्रकार के शरीर 5 सेकेंड के अंदर उसके शरीर बदलता जाता है, कभी कुत्ता कभी बिल्ली कभी दिस कभी दैट शायद तो मैं आपको कल दिखाऊंगा ढूंढ करके वो वीडियो, हाँ, सो आदमी जैसी अपनी भावना रखेगा, जैसी चेतना रखेगा, उसी के तरह से इस जीवन में ही वो अपना नेक्स्ट लाइफ क्रिएट कर रहा है. सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि मैं अपने लिए कौन सा जीवन क्रिएट कर रहा हूँ. आत्मा स्थूल और सूक्ष्म आवरण से आवृत है. देखिए स्थूल शरीर जो है ये बाहर का जो प्रोफाइल है वो दिखा रहा है, और डॉट डॉट प्रोफाइल है वो सूक्ष्म शरीर बता रहा है, और येलो प्रोफाइल जो दिख रहा है वो वास्तव में आत्मा है. इस तरह से आत्मा दो शरीर के अंदर, इस जगह शरीर के अंदर बंद है, और जब ग्रॉस शरीर को छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर को लेकर के वो साथ में जाता है. इसलिए देखो कभी वो भूत ऊत का दिखाते हैं ना फोटो, तो वो क्या दिखाते हैं, एक ऐसा पूंछ वाला चीज़ दिखाते हैं ना, वो ग्रॉस है, वो सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, वो उसको लेके उड़ता है, उड़ करके चला जाता है, पर वो उसका एक्चुअली सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार से मिल करके बनता है. आत्मा के अनुसार शरीर की बनावट, आत्मा का अपना व्यक्तित्व है. स्थूल शरीर जैसे कपड़ा पहनते हैं, ऊपर का कोट जो है वो स्थूल शरीर है, अंदर जो शर्ट पहनते हैं वो सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर जो बॉडी है वो आत्मा है. ये उसकी एक एनालॉजी समझ सकते हैं हम. इसीलिए भगवान भगवद गीता में बहुत सुंदर ये एग्जाम्पल देते हैं कपड़े का, जिससे कि व्यक्ति जो है साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है. वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही. शरीर त्यागने के बाद में जैसे हमारा कपड़ा फट जाता है तो उसको फेंक करके हम नया कपड़ा ले लेते हैं, उसी तरह से जब शरीर खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो हम दूसरा शरीर स्वीकार कर लेते हैं. एक लिक्विड ब्यूटी की कहानी बता रहा है कि एक व्यक्ति, एक राजकुमार था, वो एक जंगल में गया, वहाँ देखा एक बहुत सुंदर राजकुमारी है, तो उससे विवाह करना चाहता था. राजकुमारी ने कहा कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हो तो एक हफ्ते के बाद आना, फिर मैं आपसे विवाह करूँगी. मैंने ये स्टोरी बताया था कुछ लोगों को. सुनो सब, वापस बता रहा हूँ सुनो. तो वो राजकुमारी जो है उसने एक हफ्ते तक परगेटिव्स लेना शुरू किया. यू नो परगेटिव्स, जुलाब की गोली. और जुलाब और उल्टी की गोली ले ले करके उसने क्या किया, वो पूरा शरीर से उसका जुलाब होने लगा, उल्टी होने लगा, और उसने वो दो बर्तन लेकर के, दो तीन बर्तन लेकर के उसमें सब जमा करके रखा. एक जगह पे जुलाब जमा करके रखा, एक जगह पे उल्टी जमा करके रखा, एक ऐसे सब जमा करके रखा, और वो खुद एक हफ्ते के अंदर इतना जुलाब और उल्टी करने के कारण क्या हो गई, ऐसा पतली और एकदम बुढ़ी दिखने लगी. सो एक हफ्ते के बाद में वो राजकुमार आया, और राजकुमार ने कहा, उसी से आकर के पूछता है कि यहाँ पे एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, स्त्री रहती थी, मैं उससे विवाह करने के लिए कहा था, वो कहाँ गई. उस बुढ़िया ने, उस लेडी ने कहा कि वो मैं ही हूँ, उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था, तो कहा कि मैं ही हूँ ना, मुझसे शादी कर लो, क्या प्रॉब्लम है. तो बोला, नहीं नहीं तुम वो नहीं हो सकती हो, अरे वो तो बहुत सुंदर थी. कहा, तो तुम सौंदर्य से शादी करने आए थे ना, सौंदर्य से शादी करना है तो सौंदर्य उधर बॉटल इसमें पड़ा हुआ है मटके के अंदर. जिस सौंदर्य से शादी करने के लिए आए तो वो सौंदर्य क्या है, मटके में पड़ा हुआ है. क्या है वो सौंदर्य, नोबडी लाइक्स टू टेक लुक एट दैट. ये शरीर से निकलता क्या है बताइए मुझे. हम लोग ये शरीर को देख करके जो इतना आकर्षित होते हैं, इस शरीर से कहीं भी से क्या निकलता है, इसमें से निकलने वाले किसी चीज के प्रति भी हम आकर्षित होते हैं, चाहे किसी भी होल से निकलता हो. वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू दैट. और अगर हमको जुलाब उल्टी होना शुरू हो जाए तो एक हफ्ते के अंदर हमारा ये शरीर क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है. तो एक्चुअली हम लोग किसको अट्रैक्टेड है. अगर कोई व्यक्ति एक बहुत सारे अच्छा सुंदर पैकिंग के अंदर और कुछ डर्ट भर के बोले आपको प्रेजेंट दे लीजिए, ये तो ऊपर से देखने में वो बड़ा सुंदर लगता है ना. लिक्विड ब्यूटी जस्ट स्किन डीप. ये शरीर का सौंदर्य केवल चमड़े के ऊपर है. ये चमड़े का थोड़ा सा निकालिए इसको, फिर आपको ब्यूटी दिखाई देगा. क्या ब्यूटी है उसके अंदर से, पस निकलेगा, बाइल निकलेगा, है ना, यूरिन निकलेगा, टॉयलेट निकलेगा, क्या क्या नहीं निकलता इसमें से, मुख से, नाक से, आँख से, जो कुछ भी निकलता है. आर वी अट्रैक्टेड टू दैट. तो हम लोग कौन से सौंदर्य को अट्रैक्टेड रहते हैं. दिस इज अनदर मिसकंसेप्शन. वी शुड बिकम अट्रैक्टेड टू आत्मा, नॉट द बॉडी. आत्मा का आकार कितना बड़ा है. आत्मा बाल के नोक का 1/10,000 भाग है. शास्त्रों में बताया गया है, बालग्र सत भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय सचांताध्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह से प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाण है। ये स्वतः स्वतः उपनिषद में बताया गया है। उसी तरह से दूसरे उपनिषद में बताया कि इस अग्र सतभाग से सतान समसाधसात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूप यम संख्यातीतो ही चित्तकण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग यानी नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। यही आत्मा जो बाल के 10,000वें भाग के बराबर है वही हाथी में भी होती है, वही बड़े बड़े बरगद के वृक्ष में भी होती है, वही चींटी में भी होती है, वही एक बैक्टीरिया में भी होती है, वही एक वायरस में भी होती है, वही सब चीज में आत्मा वही होती है। सो आत्मा भगवान कहते हैं कठोपनिषद में बताया गया है अणोर अणियम महतो महियम आत्मस्य जंतो निहितम गुहाया ताम आकृतः पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादान महिमा आत्मनः। आत्मा के तत्व को जो जानता है वो व्यक्ति आत्मा की महिमा को जानता है। वही आत्मा एक चींटी का भी शरीर ढो सकती है, वही आत्मा एक हाथी का भी शरीर ढो सकती है। उस आत्मा के अंदर इतनी ताकत है। लेकिन आत्मा अपने कर्तव्य से अपने शक्ति को छीन करती है। जाने आप, मैंने उस दिन बताया था मनुष्य मस्तिष्क का पावर कितना है, कितना है पावर, 17,000 थॉट्स इट कैन प्रोसेस एट वन टाइम साइमल्टेनियसली। पर हम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपने कर्म के कारण उसको क्या किया है, शुद्र बना दिया है, उसको दूषित कर दिया है, उसको ढक दिया है। जैसे आग होती है ना, वो गोबर का आग जलाते हैं, देखो तो अंदर आग है लेकिन ऊपर राख का लेयर आ जाता है तो आप उसको हाथ में उठा सकते हैं, उसका कुछ प्रभाव नहीं होगा। लेकिन राख हटा दीजिए, उसका प्रभाव आपको पता चलेगा। उसी तरह से आत्मा के ऊपर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का जन्म जन्मांतर का ये जो राख और डर्ट है वो इस तरह से चिपक गया है कि हम उसके असली पावर को कनेक्ट जान नहीं पाते हैं। उसको रिमूव करो। उसको रिमूव करने का तरीका क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तनम सर्व आत्मा स्नापन्नम श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के नाम का कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमसनासनम नातो परतर उपाय। इसको छोड़ करके दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये इससे ही केवल हम आत्मा के ऊपर जो डर्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं, आत्मा की ओरिजिनल शक्ति को जान सकते हैं और तब हम उसको उस तरीके से उसके कार्य में उसको नियुक्त कर सकते हैं। अन्यथा ये शरीर का बोझ ढोना पड़ेगा। आत्मा न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अग्नि जला नहीं सकती है, हवा उड़ा नहीं सकती है, पानी उसको डुबा नहीं सकता है, आत्मा कहीं भी नष्ट नहीं की जा सकती है। आत्मा क्या है, अशेद्योयम मदाह्योयम अक्लेद्य अशोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थानोर अचलोयम सनातन। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, ना तो इसे जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थित और सदैव एक साथ रहने वाला है। आत्मा रहती कहाँ है, हृदय के क्षेत्र में रहती है। हाँ, हृदय में एक तरफ आत्मा रहती है और एक तरफ परमात्मा रहते हैं। आत्मा जो है वो लेफ्ट साइड में रहती है, परमात्मा जो है वो राइट साइड में रहते हैं। तो इसको हमको जानना चाहिए। एषो रुर् आत्मा चेतसव्यो वेदित्वा यस्मिन् प्राणां संविशेष प्राणश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवित आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा पांच प्रकार के प्राणवायु में तैर रहा है। हमारे शरीर में पांच प्रकार की वायु चलती है, वो है प्राणवायु अपानवायु बयानवायु समानवायु और उदानवायु। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के रूप में जीव पूरे शरीर में अपने प्रभाव को विस्तारित करता है। आत्मा इस शरीर को टच नहीं करती है, ये वायुओं के बीच में फ्लोट होती रहती है। इसीलिए जब यमदूत आते हैं तो सबसे पहले उस वायु को खींच करके निकालते हैं, उसको प्राणवायु कहते हैं। वो 5-हेडेड सर्पेंट की तरह से बोला जाता है। इसके बारे में VTG में एक बहुत अच्छा आर्टिकल सिटी ऑफ 9 गेट करके एक आर्टिकल छापा था। सो जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमस से शुद्ध कर लिया जाता है तब जा करके इसका आध्यात्मिक प्रभाव जो है वो प्रकट होता है। आत्मा इतनी अद्भुत है कि कुछ लोग जो है आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग आश्चर्यवत कहते हैं, और कुछ लोग है आश्चर्यवत मानते हैं, कुछ लोग आश्चर्यवत सुनते हैं। और इतना होने के बावजूद भी जब तक भगवान के भक्त या भगवान की शरण में कोई नहीं जाता है तब तक आत्मा के विज्ञान को कोई ठीक से समझ नहीं सकता है, चाहे कितने भी जन्म क्यों ना बीत जाए। आत्मा आध्यात्मिक है, कभी बदलती नहीं है, चेतन है, नित्य है, अविनाशी है, और शरीर ये जड़ पदार्थ है, बदलती रहती है, अचेतन है, अनित्य है, और हर परिस्थिति में मृत है। जब तक आत्मा इसमें है तभी तक वो चल रही है, जब आत्मा निकल जाती है इसीलिए हमें डेड बॉडी कहते हैं। हम अपने आप को क्या कहते हैं? दिस इज डेड बॉडी, इट्स लाइक ए मूविंग घोस्ट। समझ में आना, एक बार एक डेड बॉडी लेकर के लोग जलाने के लिए जा रहे थे, तो एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ के जा रहा था और वो लोग बोलते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो कुछ लोग बोलते थे सबकी यही गति है। तो एक आदमी राम नाम सत्य है बोल रहा था, बाकी लोग सबकी यही गति है ऐसे बोलते जा रहे थे। तो बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पिताजी ये जुलूस में चलने वाले सब लोग जो है वो भगवान का नाम ले रहे हैं, राम नाम सत्य है, फिर बाद में सब लोग बोलते हैं सबकी यही गति है, लेकिन वो जो खटिया पे सोया है जिसको लेके जा रहे वो नहीं बोलता है, हाँ वो राम का नाम नहीं ले रहा है। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा मुर्दे बोला नहीं करते, मुर्दे जो है भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो हम लोग अगर भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो हम लोग कौन है? चलते फिरते मुर्दे हैं। उसको चलाते फिराते लोग हैं लेके जा रहे हैं और हम खुद अभी चल फिर रहे हैं। हाँ, तो इट्स नॉट वेरी लॉन्ग कि हम लोग जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाएंगे। आधुनिक समाज पिंजरे का रखरखाव करता है, पक्षी को भूल गया है। इसीलिए मैं कौन हूँ ये जानना आवश्यक है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये भौतिक देह नहीं हूँ। ये है आत्मा का विज्ञान। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच।